Salam Zishan bhai, thank you so much for coming in again.
Thank you for having me. It's been a year.
Yes.
Hamari commitment hui thi ki aapko time denge to.
Bilkul aisa hi hai. For those who don't know, Zishan bhai was kind enough ki wo pehle bhi ek dafa aa chuke hain. Lekin wo hua ye ki light chali gayi thi Pakistan mein hamari 45 minute ki podcast record hone ke baad, and so we didn't release that. Humne unko request kiya tha ki wo jab time mile to zarur aaye, to wo Dubai aaye hue the. And this was the perfect opportunity. Sir, mujhe thoda sa, just to, as a start, batayega a bit of your background. You know, paida kahan par hue, early life kahan pe guzari, education kahan se li, and how did you come about creating 10 Pearls?
So, badi nominal si aur common si story hai. I'm a Karachi boy. Karachi mein paida hue, Karachi mein phir, you know, early life, mostly homeschooled. Because I'm Hafiz of Quran, alhamdulillah, so
Achha.
Went to madrasa after, and I started my schooling after madrasa, after completing the Quran.
So kaun si class mein start kiya phir?
7th se start kiya.
Achha, usse pehle end to end sara ghar pe tha?
Haan, 1 ke baad ghar chala gaya
tha. So madrason mein, apart from the religious schooling, mm-hmm. teaching, uske ilawa kya kya padha rahe hote hain? Kyunki kuch na kuch to unhone padhaya hoga na, kuch basics banayi hongi, math ki, English ki, ya wo sari ghar pe hi
hongi? Sab ghar pe tha, mostly ghar pe tha. Wahan to sirf jo hai na deeni taleem hoti hai aur Quran aapko padhate hain.
Interesting. Kaun sa madrasa tha ye?
Ye madrasa Tahfizul Quran kehte hain isko, Garden East pe.
Is it a big madrasa ya bas ek?
Haan, nahi, bada.
Achha, wahan pe badi wo bhi hoti hain jo aapke alim wagaira ke jo higher education.
Ji ji.
How was your experience in the madrasa?
देखें, अगर आप अभी सोचूंगा मैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा उस वक्त. ऑब्वियसली आपको अच्छा ही लगता है, बिकॉज यू नो यू सी योर कजन्स एंड योर ब्रदर्स गोइंग टू स्कूल, और वो 1-2 बजे घर पे आ जाते हैं और आप जाते हैं सुबह, और रात को 9 बजे घर पे आते हैं.
अच्छा,
तो वो आपको उस वक्त अच्छा ही लगेगा. आई फील लाइक यू नो इफ आई हैड अनदर लाइफ आई वुड गो बैक अगेन.
रियली
डू द सेम ड्रिल.
और वो सुबह से रात तक पढ़ाई हो रही होती है, दरमियान में ब्रेक्स होती हैं?
नहीं, ब्रेक्स होती हैं ऑब्वियसली. जोहर में जो है आपको फिर खाने का ब्रेक होता है, उसके बाद नमाज का, उसके बाद फिर शाम में थोड़ा सोने का ब्रेक भी होता है, फिर खेलने का ब्रेक भी होता है, यू नो. तो असर से मगरब आप खेल रहे होते हैं सिर्फ. सो
इंटरेस्टिंग. और वो आपको जो जो हिफ्स वाला ये प्रोग्राम है, उसमें वो बेसिकली आपको कुरान हिफ्स सिर्फ करवा रहे होते हैं, या वो यू नो उसके पीछे की जो इन डेप्थ? Sort of
शुरू में सिर्फ कुरान हिफ्ज़ कर रहे होते हैं आप, जब आप कर लेते हैं उसके बाद आपके ऑप्शन होता है कि अगर आपने नेक्स्ट जाना है तो आप जाके आलम बने और आपको समझें क्या क्या आपने पढ़ा क्या है.
आपको 6 साल लगे थे हिफ्ज़ करने में?
हाँ, ऑलमोस्ट 5 ईयर्स मैं कहूँगा 5 ईयर्स लगे, बिकॉज काफ़ी सारे चेंज स्विच स्वैप किए मदरसे. यू हैव टू फाइंड द आइडियल मदरसा.
अच्छा, ये भी होता है?
हाँ, तो वो जो है ना थोड़ा मुश्किल से मिलता है.
इंटरेस्टिंग. एंड मीनवाइल जो वो हो रहा था, तो घर पे आपको एक्टिवली पढ़ाया जा रहा था कि करिकुलम किताबें?
नहीं, जो लास्ट ईयर था जब ख़त्म, जब हमने हिफ्स कर लिया था, उसके बाद फिर
यू आर ब्रॉट अप टू स्पीड.
या
कि मैथ में क्या है चल रहा है और साइंस में क्या चल रहा है?
इंग्लिश. यस.
Interesting. फिर स्कूल किधर गए आप उसके बाद?
स्कूल जब गए तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि स्कूल में ऑब्वियसली टेस्ट क्लियर नहीं कर पा रहे थे आप, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है. तो घर के साथ ही एक हमारे छोटा सा स्कूल था, हैदरी पब्लिक स्कूल,
राइट.
और वहाँ पे जो है वो कंडीशन उन्होंने दी कि जी अगर आप फर्स्ट टर्म में क्लियर किया आपने तो फिर आपको हम कंटिन्यू करेंगे,
राइट.
अदरवाइज यू नो आपको हम नहीं रखेंगे,
राइट.
अपेरेंटली हुआ ये कि जी फर्स्ट टर्म में आई स्टूड 3rd इन माई क्लास.
अच्छा.
तो फिर वो कहते हुए सरप्राइज़ किया, ठीक है अच्छी बात है. और फिर फाइनल टर्म में आई स्टूड 1st एंड देन दे गिव मी डबल प्रमोशन एज वेल, सो आई स्किप्ड 8 एंड देन फ्रॉम 7 to 9.
बट व्हाई डू यू थिंक दैट हैपेंड? आई मीन इट डजंट, इट्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन लॉजिकली, राइट. एक लड़का है, उसने 6 जमातें पढ़ी नहीं हैं, उसने घर पर भी नहीं पढ़ा, टीचर्स ने एक्स्ट्रा एफर्ट डाली थी आपके ऊपर, या डू यू थिंक कि वो मदरसा का वो इतना रगड़ा था कि उसके बाद जब आप निकल कर आए हैं तो आपने कहा यार चलो ये तो दिस इज चाइल्ड्स प्ले सो यू आर एबल टू डू बेटर? आई मीन व्हाट हैपेंड देयर?
पैसा 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 भाई. सीन ऐसा होना चाहिए कि सोए हुए भी बंदा पैसे बना सके. टेक्निकल एनालिसिस की मैंने मास्टर क्लास ली और अब सोए सोए मेरे पैसे बन रहे होते हैं. क्रिप्टो फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट्स के ट्रेंड को मैंने समझ लिया है और उनका फायदा उठा रहा हूँ थोड़ा बहुत. कैपिटल मार्केट्स के फंडामेंटल का कोर्स भी आप ले सकते हैं, जिससे बड़ी तस्वीर आपको समझने को मिलती है और उससे मदद होती है आपकी कि आप कंपनीज या म्यूचुअल फंड से कैसे दानिशमंदी में इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं. अल्टीमेटली सोने का वक्त मिल जाता है और पैसिव इनकम आपको मिलती है कि मार्केट में कब एंटर होना है, कब एग्जिट होना है, ताकि बोरिंग लेक्चर से बेहतर है कि घर बैठे सोए रहो और पीछे छुके छुके पैसे बनते रहें. तो जाओ sarmaya.pk पे और ये 2 courses चेकआउट करो.
आई थिंक फोकस आपका जो है ना वो अच्छा हो जाता है जब आप करते हैं. एक तो ऑब्वियसली डिवाइन हेल्प है आपको, ठीक है. फिर आपको जो है आपका फोकस बेहतर हो जाता है, यू कैन एबिलिटी टू ग्रैस्प थिंग्स बिकम्स ईजियर। तीसरी चीज़ ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो इतनी रेलिवेंट नहीं होती, लाइक यू नो वॉट हैव यू स्टडीड इन इन सोशल साइंसेज इन क्लास 7 or 5, हु केयर्स राइट। अगर आप जैसे दीज डेज आजकल जो है दुनिया में जो है होम स्कूलिंग बहुत शुरू हो गई है, और यू विल सी 16 साल के लोग जो है यूनिवर्सिटी में पहुँच रहे हैं, राइट। कैसे पहुँच रहे हैं? इसलिए कि यू नो दे हैव एबिलिटी, अगर आप थोड़ा सा उसको फोकस करें तो आप कर सकते हैं,
राइट।
दैट सेम फिनोमेना है कि आपने जब फोकस किया, फोकस ऑन द राइट थिंग्स, और जल्दी में आप कर सकते हैं।
वुड यू रेकमेंड, क्योंकि आपने कहा कि आजकल ये एक फिनोमेना चल रहा है, वुड यू रेकमेंड पीपल टू होम स्कूल देयर किड्स?
मैं बिल्कुल करूँगा। देखें उसके दो इंग्रेडिएंट्स हैं जो होने चाहिए,
राइट।
पेरेंट्स के पास टाइम होना चाहिए,
राइट,
ठीक है, और एक कम्युनिटी होनी चाहिए आपके,
ताकि वो सोशल एस्पेक्ट पूरा हो सके।
एग्जैक्टली, आप यू कैन नॉट जस्ट कीप द सन और डॉटर एट होम, उसको पढ़ा सकें, उसको आपको आउटिंग करानी है, आपको अपने दिखाना है कि जी म्यूजियम्स क्या हैं,
एक्स्ट्रा करिकुलर्स में आपने डालना है।
एग्जैक्टली, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पेरेंट्स का टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बट अगर इफ़ यू एबल टू डू दैट, आई नो पीपल जिनके बच्चे जो हैं वो
एक्सेलरेटेड हैं।
एग्जैक्टली, आउटस्टैंडिंग।
इंटरेस्टिंग। सो स्कूलिंग के बाद यूनिवर्सिटी के लिए वेयर डू यू गो?
यस, आई वेंट टू टर्की, दैट वाज द चीपेस्ट ऑप्शन अवेलेबल।
दिस वाज द 90s?
दिस वाज 96।
अच्छा।
आई वेंट टू टर्की, इंग्लिश में करिकुलम था, लेकिन आई हैड टू लर्न टर्किश, आई कैन स्पीक फ्लुएंट टर्किश एज वेल।
रियली?
यस।
और आप वहाँ जाके आपने सीखी टर्किश या आप
सीख गए थे? ईयर 3 तक जो है ना वो सीख गया था मैं।
अच्छा।
फोर्थ ईयर जो था वो पूरा टर्किश में कन्वर्सेशन करते थे।
और कौन सा प्रोग्राम था, मतलब?
बिजनेस स्टडीज विद टेक्नोलॉजी।
इंटरेस्टिंग। व्हाई टर्की दो? आई मीन 90s में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था बाहर का उस तरह से, इसमें आजकल के ज़माने में, और अगर है भी तो मैक्सिमम लोग अमेरिका देखेंगे, इंग्लैंड देखेंगे।
टिपिकल मेंटेलिटी जो एवरेज ह्यूमन बींग की होती है, आप जब इंटर कर रहे होते हैं, और आपके जहन में क्या होता है, मैं बाहर जाऊँ कुछ करूँ, राइट। सेम, आई वुड नॉट से आई वाज डिफरेंट, आई वाज जस्ट लाइक नॉर्मल ह्यूमन बींग इन कराची,
राइट,
इन पाकिस्तान। एस्पिरेशन थी कि जी बाहर जाए कुछ करना है, बाहर गए और फिर देखा कि जी यस अपॉर्चुनिटीज हैं बिल्कुल। व्हेन आई ग्रेजुएटेड आई हैड 3 जॉब ऑफर्स
उधर वहीं पर टर्की में,
बिकॉज आई वॉज द a few bilingual people there.
I think that's something really smart that you did. Yeah, because so, I know a lot of people who graduated from Turkey, lekin wo language se bilkul dur rahe aur phir graduate hone ke baad wo wapas Pakistani aa rahe the because...
Exactly. No, I came back as well. Lekin uske mera reason ye tha ki mere parents jo the wo alone the, to maine kaha yaar yahan pe mil rahi hai to wahan jagah hi mil jayegi. Wapas aa gaye, 3 mahine jobless rahe.
Right.
Aur phir British Council mein jo hai education assistant ki jo hai wo naukri mil gayi.
राइट।
वहाँ से स्टार्ट किया, 7,500 रुपये तनख्वाह थी, 99 की बात कर रहा हूँ मैं, 2000 अर्ली 2000 लेट 99। और फिर वहाँ से जो है वो अपना आगाज़ किया, फिर दो कंपनियाँ और बदली, आई मूव टूवर्ड्स आई टी एजुकेशन के बाद फिर IT सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर मार्केटिंग की तरफ चला गया। और फिर 4-5 साल के बाद जो है वो ख्याल आया कि यार अब
अपना कुछ कर ले,
कुछ करना चाहिए।
Right.
उसकी भी एक स्टोरी है, यू नो ऑब्वियसली जब आप कोई काम करते हैं तो आपका इकोसिस्टम आपको सपोर्ट करता है। माय ब्रदर यूज्ड टू रन ग्लोबल आउटसोर्सिंग फॉर AOL एट दैट टाइम, एंड ही वाज आउटसोर्सिंग वर्क फ्रॉम AOL टू इंडिया, फिलीपींस, मेक्सिको, अर्जेंटीना और सारे साउथ अफ्रीका।
एंड ही वाज वर्किंग एट AOL?
यस।
सो ही वाज एम्प्लॉयड देयर?
यस।
बट ही वाज मैनेजिंग देयर आउटसोर्सिंग फॉर दीस कंट्रीज?
यस। सो ही वाज अ वेंडर मैनेजमेंट।
और वो उसके बाद वहीं थे तो he was pursuing that. And so did he bring the idea to you कि यार क्या सीन है?
Yeah, exactly. तो कन्वर्सेशन ये होती थी कि एक कन्वर्सेशन होती थी कि हमने कुछ बिजनेस करना है, तो वी ऑलवेज हैड एक गोशा घर के अंदर ना, या तो आप ड्राइंग रूम कह लें या कोई चीज़ जहाँ पे हम कहते हैं ये हमारा जो ना वर्किंग एरिया है, लाइब्रेरी कह लें या फिर जो भी कह लें, और वहाँ से जो है वो हमने रखा है कुछ करना है। फिर एक आइडिया आया कि यार ही कॉल मी सेड कि यार आई नो ऑल द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड टू बी अ गुड आउटसोर्सिंग वेंडर, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड वी कैन सेट इट अप। डिस्कशंस हुई काफ़ी, हुआ क्या ठीक है यार, आई वाज डूइंग MBA दैट टाइम फ्रॉम IBA, तो मैंने कहा ठीक है यार ये जॉब छोड़ते हैं और फिर ये करते हैं।
राइट।
आई क्विट माय जॉब, आई हैड अ कंपनी कार, आई हैड अ यू नो गुड सैलरी दैट टाइम, सब कुछ छोड़ के, मेरे भाई जो आईबीए के दोस्त थे सब कह रहे थे कि यार ये तुम
पागल हो गए
ना, मिड लाइफ, अभी तुम्हारी मिड लाइफ ही नहीं है, क्राइसिस क्या कर रहे हो।
एंड हाउ ओल्ड वर यू एट द टाइम?
आई वाज 27।
अच्छा, वर यू मैरिड?
जस्ट मैरिड, एक साल हुआ था, मैं उसी साल मैं शादी हुई थी।
अच्छा,
और 28 का था, सॉरी, और एक बच्चा होने वाला था।
सो बेगम के क्या तस्वीरात थे कि यार शादी हुई है अभी और आप तो अच्छे भले सेटल्ड आदमी से मैंने शादी की थी, व्हाट आर यू डूइंग नाउ एंड यू गॉट अ किड कमिंग इन एज वेल, राइट? दैट्स अ लीप ऑफ फेथ। व्हाट वाज द ह्यूमन फीलिंग्स एट द टाइम?
देखिए, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। मैं आपको बताऊँ कि जितने सपोर्ट मुझे बेगम ने किया है, इमेंस, आई मीन आपको बताने से था कि किस तरह मैं जब अभी स्टार्टअप करते हैं, दिस वॉज अ स्टार्टअप बैक देन, राइट? तो लॉन्ग आवर्स, कस्टमर एंड कस्टमर इन द US, ठीक है, आपका जो है ना वो वर्क लाइफ बैलेंस तो कोई है नहीं, आपका ऑफिस जो है वो आपके घर के अंदर एक कमरा है, वी स्टार्ट फ्रॉम होम, राइट? अपने घर के अंदर एक छोटा सा जो अस्करी अपार्टमेंट में रहते थे, छोटा सा जो कमरा होता है, जैसे 7 रूम जिसे कहते हैं आपको, वहाँ से हमने स्टार्ट किया था।
इंटरेस्टिंग।
विद 2 यूज कंप्यूटर्स एंड यू नो केबल नेट।
आप लोगों की फैमिली का बिजनेस बैकग्राउंड था या वाज योर फादर आल्सो
नो
employed individual?
Yeah, he was an employed individual. हमारे जो है वो extended family में business है, लेकिन हमारे father जो है वो
directly कोई नहीं था।
नहीं,
तो family का family was happy with the idea that you're trying out this new thing, because जो job पेशा families होती है ना, उनका generally होता है कि यार एक लगी बंदी अच्छी लगी हुई है, risk aversion होती है consistent किस्म की, कि growth नजर आई है, you know, गाड़ी भी मिल गई है, तनख्वाह भी अच्छी आ रही है, why would you let that go for something which is a hit or a miss?
I think it was the confidence ki ji Turkey chale gaye the, Turkey mein Turkey seekh li,
jis jo bhi karta hai kar leta hai,
wo ki ji double promotion mil gaya, 7 mein admission mil gaya, 9 mein chale gaye, Turkey chale gaye, wahan se wapas aa gaye, fir uske baad ye gaadi shaadi mil gayi baithe baithe, to ye tha ki ji बंदे में टैलेंट तो है,
हाँ,
तो ये कर लेगा कुछ ना कुछ, इसलिए जो है वो कॉन्फिडेंस था, इसलिए आई थिंक वो
दे लेट यू हैव इट। सो इनिशियली सबसे पहले जो जब आपने स्टार्ट किया, आपका अपना तो टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं है, सो इट्स नॉट लाइक यू वर सिटिंग देयर एंड डूइंग ऑफशोर वर्क, या वर यू डूइंग दैट एज वेल ऑन सम लेवल?
सो एज आई मेंशन, मैंने थोड़ा आईटी एजुकेशन में, आईटी सॉफ्टवेयर में थोड़ा काम किया था, तो आई वॉज द फर्स्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, आई वॉज द फर्स्ट डिजाइनर, द क्यूए पर्सन, बिजनेस एनालिस्ट, एवरीथिंग।
सो वो वाले सारे काम आप कर रहे थे, एंड देन जो टेक जो
डेवलपमेंट था वो
डेवलपमेंट के लिए आप बेसिकली मार्केट से लोग उठा रहे थे
जी। तो मैं एक ऑब्वियसली एक जानने वाला था, उसको मैंने बोला यार तुम क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, आ जाओ मेरे घर पे आके काम करते हैं, दिस हाउ वी स्टार्ट।
अच्छा, घर पे कितना अरसा ये घर वाला सिस्टम चला?
घर का सिस्टम जो है वो तकरीबन 1 साल चला,
राइट?
1 साल के बाद फिर एक दुकान में मूव हो गए।
अच्छा, स्टैंडर्ड दुकान
मार्केट में एक दुकान थी, सब उसमें जो है वो बारबर शॉप भी थी और ये सब कुछ था, उसमें हमारी एक दुकान भी थी। फिर वहाँ से जो है 1 साल के बाद एक शेड ऑफिस में मूव हो गए। शेड ऑफिस जो था वो उसमें दिन में हम काम करते थे, रात में एक कॉल सेंटर था।
इंटरेस्टिंग।
और फिर उसके बाद फिर अपना ऑफिस मूव किया।
दिस वाज ये मिड 2000s की बात है,
2004 स्टार्ट किया था, 2004 में, तो ये
2005-2006।
यस।
टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं, आपने जैसे बोला कि एक शेयर्ड स्पेस थी जहाँ पर, अब आजकल के ज़माने में तो लैपटॉप की दुनिया है ना, तो आप जा रहे हैं अपने लैपटॉप्स लेकर जा रहे हैं, आपने कर दिया, उस वक्त क्या पीसीज थे, लोड शेडिंग की क्या सिचुएशन थी, इंटरनेट की क्या सिचुएशन थी? आई मीन इट अगेन, वो ज़माना इतना मोबाइल नहीं था, आजकल तो आप कुछ भी नहीं है तो जैस की डिवाइस लो और भाई काम पे लगो, बट वहाँ पर तो आपको कनेक्टिविटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो कनेक्टिविटी हर जगह मिलती भी नहीं है। सो टेल मी अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वॉज देयर।
नहीं, सही कह रहे हैं, हमने जिस कमर्शियल बिल्डिंग में ऑफिस लिया था वहाँ पे जो है जनरेटर का मसला था, तो मुझे अभी तक याद है हमने जब जनरेटर अपना ख़रीदा था उसकी बकाया तस्वीर ली थी कि यार ये देखो हमारा जो है ना बैकअप है। इट वॉज अ थिंग।
और पीसीज वगैरह आपके, आप लोगों के अपने थे?
पीसीज ऑब्वियसली हमने खुद ख़रीदे थे, ऑब्वियसली यूज्ड बाय यूज कंप्यूटर्स, पाकिस्तान में बहुत मिल जाती हैं चीज़ें, और फिर इंटरनेट के लिए जो है वो PTCL से जो है वो खास परमिशन ली थी कि जी एक राउटर लिया था उनसे, वो उन्हीं से ले सकते थे बैंडविड्थ। अब तो खैर इतने सारे प्रोवाइडर हैं तो अब तो है, लेकिन
उस टाइम पे वाज अ थिंग। बाय द टाइम यू मूव टू अ शेयर्ड स्पेस, तो कितना आपका हेड काउंट हो गया था?
7 लोग थे।
अच्छा, जो इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस, अगेन द आइडिया कि आप US में बैठे हैं, और आपके भाई को तो इसका बड़ा क्लियरली आइडिया था, ही वॉज डूइंग दैट विद अदर कंट्रीज एज वेल, पाकिस्तान में इट वॉजेंट ایز پریولنٹ رائٹ. سو اس کے پیچھے پھر ظاہر ہے اس کی فائنینشیل اس کا بھی آتا ہے کہ یار منی کس طرح موو ہوگا, پے رولز کس طرح مینیج ہوں گے. ہاؤ ڈیفیکلٹ واز دیٹ ان دوز ڈیز ٹو ڈیول اپ؟
اتنا مشکل نہیں ہوتا. پیسہ اگر آپ کا بینک اچھا ہے تو وہ پیسہ آ جاتا ہے. اوبویسلی اٹ یوز ٹو کم ان مائی پرسنل اکاؤنٹ انیشیلی, جب اوبویسلی کمپنی بھی فارم نہیں ہوئی تھی, کچھ نہیں ہوتی. اس کے بعد سے کمپنی فارم کی, وہ جو بھی سول پروپرائٹرشپ تھی تو اس میں جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا.
وہ جیسے ایک دفعہ کیش آؤٹ ہوا, یہاں سے آپ آہستہ آہستہ کر کے جو ہے وہ تنخواہیں دے رہے ہیں. یس
یس
رائٹ. ایٹ واٹ پوائنٹ وڈ یو سے وڈ بی دا 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 ہوتا نا ایک بریک آؤٹ پوائنٹ ہوتا ہے کہ یار دیٹ ایئر یا دیٹ منتھ اس کے بعد سے وی نیور لک بیک اینڈ وی جسٹ چینج دا ڈی این اے آف دی انٹائر کمپنی.
آئی تھنک 2007-08 کے اندر جو ہے وہ ریسیشن آیا تھا دنیا میں اور ہر جگہ لے آفس ہو رہے تھے. ہمارے پاس بھی کوئی اس وقت تک جو تھا وہ پرابلی کچھ 40-30 کے قریب لوگ ہو گئے تھے. اینڈ وی ور لائک اب ہم ریئل سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی طرف چلے گئے. شروع وی اسٹارٹڈ ایز اے مارکیٹنگ سولوشن کمپنی, ہم لوگ ویب سائٹ وغیرہ بناتے تھے چھوٹی موٹی.
رائٹ
رائٹ. اب اس کے بعد ہم ریئل ایپ ڈیولپمنٹ کی طرف چلے گئے تھے, اپلیکیشن ڈیولپمنٹ, اور ڈاٹ نیٹ بڑی ان تھی ان دنوں. تو ان دنوں جو تھا وہ آئی فون جو ہے 3 لانچ ہوا تھا, نیا نیا آئی فون 3. تو ہم نے کہا یار ہمارے پاس بھی لوگ بینچ پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو ہم نے کہا ایک کام کرتے ہیں کہ اس کو ہم انویسٹ کرتے ہیں اس کام کے اندر اور لوگوں کو آئی فون کی ایپ بنانے کا بولتے ہیں. یہ گیم آف ادھر اسمال آئیڈیا, گیم کا ایک آئیڈیا لے کے آیا, اس کو ہم نے بنایا. اینڈ وی لانچ دی فرسٹ آئی فون ایپ فرام ٹیمپلس. وہ ہم نے بنایا
اپنے ہی انڈر.
جی جی, اپنا اپنے اپنا اکاؤنٹ رجسٹر کیا ایپل کے اوپر. اس وقت اتنے زیادہ پرووائڈر نہیں تھے, تو وی ور لائک یو نو اے فیو آف دیم. پھر اسی دوران جو ہے وہ نوکیا نے جو ہے اپنا کمپٹیشن N8 کے نام سے ایک موبائل تھا, فرسٹ ٹچ اسکرین موبائل, وہ انہوں نے لانچ کیا. اینڈ دے لانچ اے کمپٹیشن کہ جی اس کے اوپر ایپ بنائے. وہ سمبین کو OS تھا.
رائٹ.
تو ہم نے کہا گیا ٹھیک ہے اس کو ایپ کو کنورٹ کرنے سمبین کے اندر, سیم ٹیم سے. تو وہ کنورٹ کیا انہوں نے, پھر ہم نے وہ سبمٹ کرا دیا. اینڈ وی وان دا فرسٹ پرائز آن دیٹ ایپ.
اچھا,
تو وہ گلوبلی؟ ہاں, وہ نوکیا کا پاکستان کا ایونٹ تھا.
اچھا, پاکستان کا.
بٹ وہ ہم نے ون دا فرسٹ پرائز. اینڈ دیٹس ہاؤ وی بیکم نوکیا پارٹنرز. اینڈ وی ور ٹیکن ٹو مینی دا کمپنیز, لائک ڈان کی ہم نے ایپ بنائی, پھر ARY کی بنائی, کافی سارے FM کی بنائی, بہت ساری ایپس بنائی اس کے بعد ہم نے. دین وی آر لائک نون فار ایپ ڈیولپمنٹ کمپنی.
رائٹ.
پھر اس کے بعد ایک اور کمپٹیشن ہوا گلوبل, AT&T نے کیا اس دفعہ, اور اس پہ ہم نے ایک ایپ سبمٹ کی, گیم سبمٹ کیا ایک. اینڈ وی ون دا سیکنڈ پرائز ان دا ورلڈ.
انٹرسٹنگ.
یہ ہے بات 2009 کی. 2009 میں وی وان دا پرائز فار $50,000.
اچھا,
اس ایپ کے اوپر. دین وی بیکیم اے فیمس گیم ڈیولپمنٹ کمپنی. اور یو نو وی گور اپروچ بائی ایجنسی جو کہ مارول کا کام کرتے تھے. اینڈ وی آر ڈوئنگ مارولز ورک ان پاکستان, 3D وغیرہ کا کافی بہت گیمس بنائے. وی فارم اے کمپنی کال گیم پلانٹ, تو اس کی طرف چلے گئے. تو وی آلویز یو نو دیکھا کہ یہ اپارچونیٹی کہاں پہ ہے, اس طرف گرو کر لیا. ایسا کوئی یہ نہیں تھا کہ جی یہ سوچ کے یہی کرنا ہے صرف, کہ جیسے ہوتا نا یہ پروڈکٹ بنانی ہے تو یہ بنانا ہے. آئی تھنک دیٹس دا آج کل کا جو وہ ہے نا اسٹارٹ اپس کا جو ورڈ پیوٹ, وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو اس وقت ایجاد نہیں ہوا تھا, لیکن وی ور ڈوئنگ دیٹ.
الٹیمیٹ کراچی والا نا, کہ دیکھنا ہے کہ کہاں سے دھندا چل سکتا ہے, تو اس میں کنسسٹنٹلی وہ کرنا. مجھے ایک بات بتائیں, آئی ڈنٹ نو دیٹ ٹیمپلز از اے گیم ڈیولپمنٹ کمپنی. اینڈ اس میں ضرور یہ کہوں گا کہ میں نے اس طرح سے اگریسولی ریسرچ بھی نہیں کیا. آر یو اسٹل اے گیم ڈیولپمنٹ کمپنی اور از دیٹ اے ڈی این اے دیٹ از فار لاسٹ؟
نہیں, دس وی ہیو سم کیپیبلٹی اسٹل. ہم لوگ کافی, جیسے آج کل جو ہے وہ گیمس جو ہیں وہ آگمنٹڈ ریالٹی اور ورچوئل ریالٹی پہ بن رہے ہیں. رائٹ. تو وی ہیو کیپیبلٹی ٹو ورک آن AR اینڈ VR. ٹھیک ہے, اب اس میں آپ گیم بنائیں, اس میں آپ ایکسپیرئنس بنائیں, اس میں آپ کوئی برانڈ کے لیے کوئی کام کریں, تو وی ہیو دیٹ کیپیبلٹی.
یو آر اوپن ٹو دیٹ؟
یس یس.
ہیو یو گائز سٹارٹڈ ورکنگ آن دا ویژن پرو جو ایپل کا ہے ابھی ریسنٹلی؟
ایپل کا ویژن, ہم نے جو اس کا پہلے والا ورژن تھا, جو سوری ایپل کے نہیں, جو اس کا مائیکروسافٹ ورژن تھا.
رائٹ.
سرفیس ہولولینس, اس پہ کافی کام کیا ہم نے. دین وی سو کہ یار کسٹمرز نہیں ہیں. رائٹ. تو
آر این ڈی مارکیٹ اس طرح ڈیولپ ہوئی نہیں.
آر این ڈی تو ہم نے کر لی, وی ہیو دا کیپیبلٹی, بٹ کسٹمرز نہیں ہیں. تو ہم نے جو ہے وہ ویژن پرو کے اوپر کام بھی نہیں.
سو یو آر ویٹنگ فار کرٹیکل ماس, جیسے آئے گا تو یو ہیو دا کیپیبلٹی, یو ول بیسیکلی ڈپلوائے دیٹ دیر. پاکستان میں اس وقت, فار دوز اگین, میں نے ویسے انٹرو میں بول دیا ہوا ہے, لیکن پھر سے میں اگر بول دوں, یو ہیو 800 پیپل ان پاکستان. رائٹ.
گلوبلی 1300 پلس لوگ ہیں پاکستان میں, 800 کے قریب ہیں, 800 پلس. اینڈ دین وی گاٹ 400 پلس ان لیٹن امیرکا.
رائٹ. کہاں پر؟
کوسٹا ریکا, کولمبیا اینڈ پیرو.
ठीक है,
एंड देन वी गॉट यूएस 200 से प्लस लोग,
और ये अक्रॉस द ग्लोब ये सारे 10 पर्ल्स के नाम से ही हैं।
यस,
10 पर्ल्स लैटिन अमेरिका, 10 पर्ल्स अमेरिका, 10 पर्ल्स पाकिस्तान।
यस,
इंटरेस्टिंग। एंड व्हाट्स द प्राइमरी कंपनी, लाइक इज दैट द कंपनी इन द यूएस?
यस,
दैट्स द पेरेंट कंपनी ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस।
यस,
इस वक्त आपकी क्या फीलिंग है एज समवन हु रन्स एन आईटी सर्विसेज कंपनी? बड़ी सारी दुनिया में बड़ी चेंजेस आ रही हैं, पाकिस्तान में बड़ी चेंजेस आ रही हैं, आप क्या कहेंगे कि आप सुकून में हैं या आप एक्साइटेड हैं फॉर ग्रोथ या आप परेशान हैं बिकॉज यू नो एआई सबको तबाह कर जाएगी? व्हाट्स द सेंटिमेंट?
देखिए, आई एम ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक का फ़ायदा ये होता है कि आप जो हैं वो यू कैन सी अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अगर आप परेशान हो जाएंगे तो फिर यू डोंट, आपको एक लेंस होता है आँखों में, वो आपको जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज दिखाता नहीं है। तो वी सी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आउट देयर। ए आई इट्स सेल्फ इज़ एन अपॉर्चुनिटी, राइट? हम इसको जो है ना वो चैलेंज एज एन अपॉर्चुनिटी चैलेंज लें, ये ना देखेंगे आपको जो है ना रिप्लेस कर देगा ये। एंड हम जो है वो बहुत एग्रेसिवली इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ग्लोबल सिचुएशन ये है कि जी जो दुनिया में कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट रोक ली है इस वक्त, चूँकि इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं और दे डोंट नो कि रिसेशन आएगा, आने वाला है, ये चला गया है, लोगों को पता नहीं है। तो इसलिए लोग, पीपल हैव होल्ड ऑन देयर फंड्स। काफ़ी सारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट रुक गई है। और अगेन मैं आपको बताऊंगा कि भाई हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में जिस तरह काम हो रहा है वो मोस्टली काम हो रहा है ऐसी कंपनीज के साथ जो काम कम छोटा काम करते हैं। ठीक है,
वो व्हाट डू यू मीन बाय दैट?
लाइक जो अच्छी बड़ी कंपनी होगी राइट, यूएस में या यूरोप में, वो बड़े वेंडर्स के साथ काम करती है। बड़े वेंडर्स का मतलब ये है कि जिनके पास 10,000 से ऊपर लोग हो, बिकॉज दे वांट टू मेक श्योर कि कोई रिस्क नहीं है काम में। एक कंट्री रिस्क होता है, एक वेंडर रिस्क होता है,
राइट?
ठीक है, ऑलरेडी पाकिस्तान में एक कंट्री रिस्क ऑलरेडी है, और वेंडर रिस्क भी, अगर वेंडर रिस्क भी है बिकॉज बहुत छोटे छोटे वेंडर्स हैं। एवरेज वेंडर जो है साइज 300, 250, 500 भी नहीं, सॉरी 300, 200, 100। आई वुड से अगर मीन लें, मीन 100 है। ठीक है, बिकॉज दे आर हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज जो कि 50 से ऊपर नहीं जा रही,
राइट?
दे आर हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज जो कि 100 से ऊपर नहीं जा रही,
राइट?
ठीक है, अगर आप देखें 10,000 से ऊपर एक कंपनी भी नहीं है,
राइट?
रीज़न क्या है हमारा? रीज़न ये है कि जी हर बंदा अपनी एक डेढ़ ईंट की मस्जिद बना के बैठा है। कहते जी मुझे एक घर मैं खरीद लूँ, एक गाड़ी खरीद लूँ, एक फार्म हाउस खरीद लूँ, और उसके बाद मैं सुकून में हूँ, और मैं जो है वो अब
गांव का सेठ हूँ,
बस अब मुझे ज़रूरत नहीं, अल्लाह ने बहुत दे दिया, बस बहुत है।
right.
तो बेसिकली मेंटेलिटी ये है कि जी बस मैं खुश हो जाऊँ,
right.
मेरा पेट भर जाए, मेरी फैमिली सही हो जाए। और भाई जिसके साथ आप काम कर रहे हो, जो आपके आसपास के लोग हैं, उनका क्या है? ग्रेटर गुड क्या है? मुल्क का क्या है? वो मेंटेलिटी नहीं है। इसलिए जो है कंपनी, कोई बंदा आप कंपनी बढ़ाने, अच्छा अगर आप देखें दूसरी कंपनीज कैसे बड़ी हैं, टाटा की बात कर लें आप यू नो, और दूसरी कंपनी इन्फोसिस वगैरह, 3 लाख लोग, 2 लाख लोग, 1 लाख लोग नॉर्मल है। कैसे हुआ? क्या सब हायर किया उन्होंने? नहीं, दे एक्वायर्ड कंपनीज। ठीक है, पाकिस्तान में आप जाएं, आप किसी को बोले आपकी कंपनी एक्वायर करी है, नहीं नहीं जनाब, तो मेरी रोजी रोटी है, मैं कैसे बेचूँ? ठीक है, तो वी हैड सो मैनी कन्वर्सेशंस इन पाकिस्तान। लोग जो है वो अपना कंपनी को अपना बच्चा समझ के कहते हैं नहीं, हमने बेचनी नहीं है। तो जब छोटी छोटी साइलोज में काम होता रहेगा तो कैसे आप बड़ा काम लेके आएंगे?
डू यू थिंक इसमें शायद मॉडल की रीइमेजिनेशन की ज़रूरत है? एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज, इसको मैं इस तरह से करूँगा। रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइन जो कि क्विंटेसेंशियल सेठ कंपनी में है। तो वो मुझे बता रहे थे कि सक्सेशन किस तरह होती है एक स्टैंडर्ड मेमन सेठ कंपनी की, ना कि वो सारे बड़े जो भाई हैं उन्होंने बैठ के 10 फैक्ट्रियाँ लगाई, अब सबके मिल मिला के 10 बेटे हो गए। तो वो जब सक्सेशन की बारी आई तो उन्होंने कहा ये वाली फैक्ट्री उसकी, ये वाली फैक्ट्री उसकी, ये वाली फैक्ट्री उसकी, और अब सारे सारे फिर से रीस्टार्ट करो। जो कि अगेन सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि यार अगर आपने ज़ारा के लिए बिड करना है, आपने एक्स वाई जी के लिए बिड करना है, तो द स्केल विल डेफिनेटली मैटर। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा वाई डोंट यू सॉर्ट ऑफ कॉर्पोरेटाइज योर बिजनेस एंड सबको देना है, आई गेट इट। और उसमें वो हमेशा कॉन्वर्सेशन में यही होता है कि वो एक कज़न ज़रूर ऐसा होता है जो सबसे ज़्यादा सयाना होता है कंपेयर टू बाकी सारे के सारे। तो मैंने कहा कि वो सारों से कहो वोट करें, वोट करके उसको चेयरमैन ऑफ द बोर्ड बनाएं, सारों को बोर्ड में बैठाओ और उनको जो भी इक्विटी तुमने डिवाइड करनी है वो सबको इक्विटी दे दो, बट रन एज अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन रादर देन यू नो एवरीबडी हैविंग देयर ओन फैक्ट्रीज। बिकॉज उसमें यही होगा 10 में से 3 तो बिल्कुल ही निकम्मे थे, उनकी फैक्ट्रियाँ वैसे ही बंद हो जाएंगी, साथ रह जाएंगे वो भी इंडिविजुअली कर रहे होंगे. इस केस में भी आई मीन यू गॉट दैट वन मॉडल वेयर आप कहते हैं कि यार मैं जाऊँगा, मैं बाय आउट करूँगा एक कंपनी को और मैं उसको एक्वायर कर लूँगा, राइट. उसमें फियर लोगों का ये है कि यू नो मुझे दैट दिस इज़ ऑल आई नो, राइट. मेरे पास एक कस्टमर है या दो चार कस्टमर्स हैं, वो चलते हैं, मैं उस साइकिल पर चलता हूँ, मेरी ज़िंदगी सेट है, मैंने इसी में करके आगे निकल जाना है. अगर मैं आज बाय आउट ले लिया तो पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी में तो आपको पैसा इन्वेस्ट भी नहीं करना आता ना, आप किधर इन्वेस्ट करें, प्लॉट लेंगे आप क्या करेंगे. तो डर ये होता है कि मैं इस कैश का करूँगा क्या, और उसमें फिर प्राइसिंग की टेंशन होती है कि यार ये मुझे चूना तो नहीं लगा रहा, किस बेसिस के ऊपर ये मुझे प्राइस कर रहा है, 3x पे कर रहा है, 5x पे कर रहा है. तो ऑल्टरनेटिवली देर कुड बी लाइक वो है ना मर्जर्स एंड एक्विजिशन, मर्जर्स भी होते हैं. अगर हम एक्विजिशन से साइड पे करके मर्जर्स की बात करें और उसमें पोटेंशियली हम अगेन कॉर्पोरेटाइज करें उसको, एक्विटी शेयर होल्डिंग की बात करें कि यार हम बाय आउट नहीं करते हैं, हम तुम्हें एक्स अमाउंट ऑफ मनी इन एक्विटी दे देते हैं, कम जॉइन अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन एंड देन बी अ पार्ट ऑफ अ बिगर थिंग, हैज़ देयर बीन कन्वर्सेशन ऑन दैट?
अगेन देखें, अगर तो रेवेन्यू जो है वो सब्सटेंशियल है तो ये, और दो कंपनी बराबर की है, मर्जर मोस्टली जो है बराबरी कंपनीज में होता है, ठीक है. ईगो इतनी बड़ी होती है कि जी वो बराबर को मानते नहीं कि हम बराबर हैं, ओके जी मैं आगे हूँ, हम बराबर तो हैं लेकिन मेरे पास कस्टमर अच्छे हैं, हम बराबर तो अच्छे हैं लेकिन मेरे पास लोग अच्छे हैं. तो उस वजह से जो है वो कभी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिल्डिंग नहीं है. बट दे आर सम कंपनीज हैं पाकिस्तान में जो मिलके ऑफिशियली मर्ज नहीं किया उन्होंने, लेकिन बैक एंड के ऊपर उन्होंने एक छोटा सा कंसोर्शियम बना लिया है, और वो हो इसलिए रहे कि वो दे वर लाइक गुड फ्रेंड्स,
राइट. वो ट्रस्ट वहाँ पर था, क्योंकि इंडस्ट्री का जो मुझे नज़र आया प्रॉब्लम वो ट्रस्ट का है. बेसिकली पाकिस्तानी इकोनॉमी ट्रस्ट की मारी हुई है, क्योंकि नोबडी ट्रस्ट एनीवन, सो ऑब्वियसली एवरीबडी वांट्स टू डू देयर ओन थिंग. बट हैव यू गाइस हैव टेंपर्स बीन एबल टू एक्वायर एनीवन थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम?
या वी एक्वायर्ड अबाउट 13 कंपनीज सो फार,
राइट. व्हाट वाज द साइज ऑफ दीस कंपनीज?
फ्रॉम जीरो टू यू नो, एक्वायर भी किया हमने जिसमें कोई काम भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस जस्ट टैलेंट. एक कंपनी, एक बंदे की कंपनी थी, एंड दे सेड कि यार आई यूज्ड टू हैव सम वर्क, अभी तो कुछ नहीं है. और जब अच्छे टाइम पे उसको हमने ऑफर दी थी तो उस वक्त उसने नहीं ली थी,
right.
जब फिर वो खुद ही आया कि जब मेरे पास कुछ नहीं बचा मुझे आप ले लें. तो वी डन दैट एज वेल, बट वी एक्वायर्ड कंपनीज ऑफ साइजेबल रेवेन्यू एज वेल,
इंटरेस्टिंग,
एंड इन पाकिस्तान, इन US, इन UK एंड कोस्टा रिका, कोलम्बिया, फिर हर जगह हमने एक्वायर किया,
राइट. अगर मैं आपसे पूछूं कि आजकल नहीं, पिछले 10 साल से ना हर 2 से 3 साल बाद पाकिस्तान में डिफरेंट लीडरशिप्स प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, फेडरल लेवल के ऊपर, वो एक नारा लगाती हैं, कभी 10 अरब का होता है, कभी 20 अरब का होता है, कभी कुछ बहुत ही हीरो थे तो उन्होंने 50-50 अरब का भी नारे लगाए.
अच्छा,
वो नंबर नहीं आ पा रहा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में. और यू नो एवरीबडी हैज़ रीजंस व्हाई वी फेल्ड और वी कंटिन्यू टू फेल, एंड देन एवरी टाइम नारा लगता है तो एवरीबडी हैज़ सम फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन एज वेल कि सर ये कर देना तो हो जाएगा. व्हाट्स योर ओपिनियन कि हम क्यों नहीं उस तरह से ग्रो कर पाए पाकिस्तान में, जिस तरह से यू नो कंपैरेटिव मार्केट्स इंडिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इवन आई वुड से ऑन सम लेवल अब आप कह रहे हैं कि लैटिन अमेरिका इज़ यू नो प्रॉपिंग अप. So why were we not able to grow our market?
So there are a couple of reasons. एक तो ये है कि जी आप पाकिस्तान का जो political perception है वो बड़ा जो है ना challenging है. So we work with you know big brands in the UK and US and even you know जब हमारा उनको they know कि यार पाकिस्तान में काम हो रहा है, सब कुछ है, but whenever there is a renewal of the project, उस वक्त जो है ना डिस्कशन होती है पाकिस्तान की
क्या हालात हैं.
एवरी ईयर यू हैव दिस कन्वर्सेशन. अगर आपका जो है PO है वो हर 6 मंथ पे या 3 मंथ पे है, तो हर 3 मंथ पे एक कन्वर्सेशन होती है, राइट. तो दैट्स वन ऑफ द मेन रीजन कि बड़ी कंपनीज जो हैं वो अगर आपने अरब की बात करनी है, 50 अरब या बिलियंस की अगर बात करनी है, तो आपको फिर बड़ा रेवेन्यू लेके आना. अभी हमारे पास काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं, फ्रीलांसर्स बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर वर्किंग विद स्मॉलर वेंडर्स. स्मॉलर वेंडर्स का स्पेंड कम होता है. दे वुड हायर अ पर्सन फॉर $1,200 $1,500
और प्रीमियम ही नहीं है बेसिकली इसके अंदर.
कोई प्रीमियम नहीं है उसकी, अपने अगेन उसकी अपनी रोजी रोटी चल रही है, खुश है वो टैक्स फ्री कमा रहा है. उसको उसकी जो है ना वो सही चल रही है,
मतलब देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट.
यस,
बट एक्चुअली जो रियल पाई है उसको आप टारगेट ही नहीं कर रहे.
एग्जैक्टली. सो अगर आपको अपना रेवेन्यू बढ़ाना है.
बट वुड यू से दैट कुड बी मिटिगेटेड बाय लेट्स से होल्डिंग कंपनीज राइट. सो आप कहते हैं कि यार मैं यूके में हूँ, मैं जाता हूँ जाके मैं प्रोजेक्ट पे बिड कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि यार मैं काम आपका करवा दूंगा, तो डू द वेंडर्स एक्चुअली केयर कि यार मेरे बंदे किधर बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? मसलन आप कह रहे हैं आई एम यूके बेस्ड कंपनी, आई विल गेट योर जॉब डन, बंदा आपका कॉल पे आएगा, आप टेंशन ना खाएं. सो आर दे एक्चुअली लाइक डूइंग दैट लेवल ऑफ ग्रैन्यूलर ड्यू डिलिजेंस के यार बंदा जो है वो एक एक बंदा कहाँ बैठा हुआ है, क्या हो रहा है?
देखिए अगर आप बड़ी कंपनी के साथ काम करेंगे तो दे डू दैट. ड्यू डिलिजेंस इस लेवल की होती है कि उनका अक्सर पुलिस सर्टिफिकेट भी जाता है.
अच्छा, हर एक एक रिसोर्स.
एग्जैक्टली, वी हैव कस्टमर्स जो कि इनको हमने पुलिस सर्टिफिकेट भेजा हुआ है, क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, इनका कोई वो नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, राइट. तो उस लेवल की भी होती है. लेकिन अगर आप छोटे कस्टमर के साथ काम करेंगे तो दे डोंट केयर, कहाँ भी बैठा हो, तो फिर आपका रेवेन्यू कम आएगा. और यू नो ऑब्वियसली फोकस ये है गवर्नमेंट का कि जी जो फिर पॉलिसी का जो है ना फोकस ये है कि जी आपने बढ़ानी है. तो अब बढ़ाने के लिए जो है ना वो राइट स्टेप्स होने चाहिए. पाकिस्तान का जो है ना ब्रांड, पाकिस्तान को जो है ना वो इम्प्रूव करना पड़ेगा. कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे इंटरनली जो हैं चीज़ें हैं. कुछ लोग कहते हैं कि जी आईटी एजुकेशन का जो मैार है वो कम है. आई डिसएग्री विद दैट, आई डोंट एग्री विद दैट.
व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? टैलेंट इज अ मेजर क्वेश्चन. और इसमें मैं कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि एक तो द क्वालिटी ऑफ टैलेंट दैट्स कमिंग है, और दूसरा जो आजकल मेजर जो पिछले दो साल में मैच किया है वो चर्न का है कि यार हर बंदा एटलीस्ट जो क्वालिटी टैलेंट है जो आप जिसको आप अच्छा मोनेटाइज कर सकते हैं वो टैलेंट जो है वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, राइट. और ब्रेन ड्रेन इज बिकमिंग अ मेजर कॉन्वर्जेशन नाउ. तो इन दोनों केसेस में व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट?
देखें पाकिस्तान में जो है ना आई वुड से कि वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है. एंड आई हैव न्यूमरस ईमेल्स फ्रॉम माई कस्टमर्स, बिग कस्टमर्स जो कि तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तानी टैलेंट की, ठीक है. आई गिव एन एग्जांपल कि अगर आप कोई जो है ना माइनिंग करते हैं ना आप डायमंड्स की, तो आपको जब डायमंड निकलेगा तो उसको आपको थोड़ा सा तराशना पड़ेगा, ठीक है. तो टैलेंट कमिंग आउट फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छा है, रॉ है. आपको थोड़ा सा उसको टाइम देना पड़ेगा, आप उसको तराशेंगे, सही करेंगे, फिर वो शाइन करेगा, ठीक है. ये अजम्पशन कि जी किसी को भी आप यूनिवर्सिटी से उठा के लेके आएंगे और वो आपका पैसे कमाना शुरू कर देगा आपके लिए, ये गलत अजम्पशन है. इस अजम्पशन के ऊपर इंडस्ट्री नहीं चल सकती, ठीक है. तो आपको कुछ जो है ना उनको टाइम देना पड़ेगा सो दैट दे कैन टू कुड शाइन. और ये इसमें डिफरेंट थ्योरीज हैं, अप्रोचेज हैं, मेथडोलॉजीज हैं कि जी इंटरनल आप जो है ना वो काम जो है वो उनको दें, कराएं बच्चों से इंटर्नशिप्स कराएं, उनको जो है वो कम पैसों में वो कर दें, एक्सपोर्ट कर दें, इनको सब्सिडीज दें कंपनीज को. डिफरेंट लेवल्स हैं जो 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 कर सकते हैं वो करें.
गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आपको क्या लगता है कि किस हद तक इंटरवेंशन होनी चाहिए? क्योंकि काफ़ी दफ़ा लोग आते हैं कहते हैं यार गवर्नमेंट इज सपोज टू बिल्ड अ सोल्यूशन, राइट. सो आई गेट द ब्रांड पाकिस्तान, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद आईटी इंडस्ट्री पर से, दैट्स एन ओवरऑल समथिंग दैट नीड्स टू बी डन. स्टेबिलिटी की बात होती है, हम कहते हैं ठीक है यार चलो मुल्क में स्टेबिलिटी हो जाएगी तो एवरी बिजनेस मैन विल बेनिफिट फ्रॉम इट. बट काफ़ी दफ़ा आता है, अगेन आपने सब्सिडी की बात की जिस तरह, राइट. सो उस पर फिर काउंटर वो ये आता है कि अगर गवर्नमेंट किसी पॉइंट पे भी इंटरवीन करना शुरू कर देगी, चाहे वो टैक्स ब्रेक के थ्रू हो, चाहे वो सब्सिडी के थ्रू हो, चाहे वो किसी और चीज़ के थ्रू हो, तो उसमें फिर जो एक्चुअल बिजनेस डायनामिक है ना वो बेसिकली आप ऑलरेडी टांग काट रहे हैं उस इंडस्ट्री की जिसमें वो फंक्शन ही नहीं करना चाहती. जैसा हम कहते हैं हमारा मीडिया है, तो वो मीडिया अगर सिर्फ गवर्नमेंट के एड्स पे चलेगा तो उनका बिजनेस मॉडल बिल्कुल ही तबाह हो जाएगा, बिकॉज जिस दिन अगर गवर्नमेंट जो है वो नहीं दे सके एड्स तो नहीं चल सकते, और हमने देखा ये होते हुए भी. सो सिमिलरली अ लॉट ऑफ पीपल से कि यार गवर्नमेंट, मतलब हम गवर्नमेंट से सिर्फ ये चाहते हैं कि यार बस प्लीज़ आप ना अच्छे के लिए सोचें ना बुरे के लिए सोचें, जस्ट लेट अस बी एंड विल डू बिजनेस. डू यू अग्री विद दैट सेंटिमेंट? एंड देन देर इज़ अनदर साइड देर ऑल्सो सेज कि गवर्नमेंट का रोल रादर देन सब्सिडाइजिंग और डूइंग एनीथिंग एल्स वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बट ग्लोबली गवर्नमेंट्स प्ले ऑलवेज प्ले द रोल ऑफ द बिगेस्ट बायर्स, राइट. सो वो दे कम इन एज द बायर एंड दे सेट अप एन इंडस्ट्री इंटरनल के, क्योंकि वो बजाय इसके कि वो पैसा सब्सिडाइज करें, वो कहें कि यार हमें डिजिटाइजेशन करानी है, हमें एक्स वाई जी ये काम करवाना है, उसके लिए पैसा जो है वो हमने एलोकेट किया है और वो प्राइवेट सेक्टर को जा रहा है, बजाय इसके कि गवर्नमेंट जो है वो अपने पी आई टी बीज या इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन रन करे, वो प्राइवेट सेक्टर को इस तरह एम्पावर करे कि जिसमें आपका टैलेंट जो लोकलाइज टैलेंट है वो लोकल प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाए, ट्रेन हो और फिर इवेंचुअली दे बिकम गुड इनफ टू कम्पीट ग्लोबली. व्हाट आर योर थॉट्स?
आई थिंक बोथ अप्रोचेस हैव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ठीक है. आइडियली मैं कहूँगा कि दोनों का मिक्स होना चाहिए, बिकॉज प्रॉब्लम जो है ना वो एक सर्टन सेगमेंट का नहीं है, एक सर्टन शहर का नहीं है, सर्टन लोगों का नहीं है, पूरे पाकिस्तान का प्रॉब्लम है. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पे आप सब्सिडी दे सकते हैं ट्रेनिंग करने के लिए लोगों को. सब्सिडी मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो करें, आप ट्रेनिंग कराएं लोगों की.
ओके
ठीक है. कहाँ पे आप उनको काम दे सकते हैं कि जी मैं बायर हूँ, आप मेरे लिए काम करें. कहाँ पे आप जो है वो इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं कि जी आप जो है हम आपको जो है वो प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, आपको हम सब्सिडी दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं. कहाँ इंडिविजुअल्स को आप कर सकते हैं कि हम आपको बाहर भेज रहे हैं, आपको हम जो है वो इधर कर रहे हैं. तो डिफरेंट चीज़ों पर होना चाहिए आइडेंटिफिकेशन. एक गवर्नेंस सिस्टम होना चाहिए. गवर्नेंस सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई हो क्या रहा है, मतलब ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, टारगेट्स क्या हैं, कौन जो है वो मीट करेगा, कैसे मीट करेगा, वो एक पूरा प्लान होना चाहिए. हम जो है ना वो एक्शन आइटम्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं. एआई की ट्रेनिंग करा दो. तो भाई एआई की ट्रेनिंग मतलब क्या करना है, एआई की ट्रेनिंग करके मतलब किसको करा रहे हो?
किसी ने स्टडी किया है कि रिक्वायरमेंट कितनी है उस टैलेंट की, उसके हिसाब से हम बैक ट्रैक करें कि यार अगले 3 साल में इतना टैलेंट चाहिए, अगले 4 साल में. बस बड़ा सा नारा लगा के स्टेडियम भरने से तो फायदा नहीं है.
एग्जैक्टली मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम जो है ना वो एक्शंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं. हम प्लानिंग पे टाइम नहीं लगाते. अगर हम प्लान करें चीज़ों को तो फिर हम देख सकते हैं कि जी अगले साल क्या होने लगा है, अच्छा ये है, इसको 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 ऐसे करते हैं, सॉल्व करते हैं. वो वाला जो है ना काम थोड़ा सा करना.
मॉडर्न डे जो ये कह लें इसको डिजिटल आउटसोर्सेज, मैं आईटी से थोड़ा सा साइड पे इस वजह से हूँगा बिकॉज अब डिजिटल की बहुत सारी और, अब आप मतलब टेक्निकली पाकिस्तान में बैठा एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर भी काम कर सकता है जिसका कंप्यूटर साइंस से कोई ताल्लुक ना हो, राइट? वो 2,500-3,000 डॉलर की नौकरी कर सकता है. डू यू थिंक कि जो फ्यूचर का जो टैलेंट है उसको 4 साल की डिग्री करना ही लाजमी है, या वो BBA का स्टूडेंट भी हो सकता है लेकिन वो सर्टन यू नो ट्रेनिंग्स करके, बूट कैंप्स करके वो इस इंडस्ट्री का पार्ट बन सकता है? क्योंकि इंडस्ट्री the way that we used to look at it in the 90s and the way that it is now is very different, right? Ab to low code no code bhi aa gaya hai, ab aur bahut sari cheeze aa gayi hain. You don't necessarily need the hardcore technical knowledge as much as you need a wider knowledge of business, of products, of design and stuff like that. In fact maine kal ek video dali to us pe ek bada acha comment aaya hua tha, us pe sahab ne likha hua tha ki main architect hu, do you think I have a roadmap towards UI UX design? बड़ा एक इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट है कि यार जो NCA के इतने सारे बच्चे निकलते हैं 30,000 रुपये की नौकरियों में बैठे हुए, वो एक मतलब डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया ना आपके. यहाँ पर IT वाला अगर 2,000 डॉलर भी लेता है तो वो पाकिस्तान में बैठा जो है वो टैक्स फ्री 5.5-6 लाख रुपये कमा रहा है. और 10 साल का एक बंदा है जिसने BBA किया हुआ एक मिड टीयर यूनिवर्सिटी से और वो किसी अपने हिसाब से किसी बड़ी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में लगा हुआ है लेकिन वो 2.5 लाख रुपया कमाता है, उसमें भी उसका टैक्स कटता है. तो जो डिफरेंस है बिटवीन बोथ हैज़ बिकम सो लार्ज और बढ़ता रहेगा जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी. कि ज़ाहिर लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी, वो उसको देखना शुरू हो गए. लेकिन क्वेश्चन अगर मैं पाशा का स्टेट वो निकालूं जो रिपोर्ट है, वो कहते हैं जी 25,000 IT के ग्रेजुएट्स हैं. अगर मैं सिर्फ IT पे इस अगर मुझे मतलब द सोल्यूशन इज़ ओनली अ 4-year कंप्यूटर साइंस IT प्रोग्राम, then that's a scary thing to imagine. But if it can be extrapolated to bigger audiences, so then, you know, maybe we can see a better solution.
Bahut interesting jo hai na ye dynamics hai. I personally feel ke yaar university education is overrated.
Okay.
You don't have to study 4 years to be eligible for a job. And we have people, we've hired people from after intermediate. Ek to humne आइडेंटिफाई किया था, स्पॉट किया था टैलेंट जो 18 का भी नहीं था.
अच्छा.
राइट. एंड नाउ ही इज़ अ सीनियर डेवलपर.
व्हाट डज ही डू? लाइक अगर इस रिसोर्स की बात करें तो उसका रोल क्या है इस वक्त, वो क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है
अभी इस वक्त? वो रिएक्ट के ऊपर काम कर रहा
है. अच्छा, रिएक्ट के ऊपर काम कर रहा है. सो ही लर्नड ऑल ऑफ दैट
एट टेंपल्स.
यू गाइस हैव अ टेंपल्स एकेडमी एज़ वेल, आई बिलीव
वी डू. वी हैव अ templesuniversity.org. ये इज़ अ फ्री प्लेटफॉर्म
फॉर एनीवन टू गो एंड लर्न.
एनीवेयर इन द वर्ल्ड कैन गो एंड लॉग इन and take courses for free.
Interesting. And if they learn stuff, they can apply to your jobs as well.
Yeah.
And you'll hire them if they're good.
Yeah. But it's very easy. I say that if you have an interview in 10 Pulse and its course is in the university, then you can come and do a course and your interview will be clear.
Right. I mean, it's a very simple thing. We don't stop people. चीज सीखें, अगर सीख गए तो देर इज नो रीजन वाई यू वोंट बी हायर.
एग्जैक्टली. सो बेसिकली यही है ना कि जी अगर आप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं जिसको जॉब नहीं मिल रही, या फिर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया, आपने जॉब करनी है, IT को स्विच करना है, तो फिर वो जो है आपको स्किल कहाँ से मिलेगा? तो देर इज अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट ऑन यूट्यूब. ठीक है. हमने लोकलाइज कॉन्टेंट थोड़ा सा कर लिया है. जो ट्रेनर है वो यही पाकिस्तानी है. हमारे जो ट्रेनर्स हैं हमारे यूनिवर्सिटी के, दे आर लाइक इन हॉट कमोडिटी ऑन लिंक्डइन. लोग लोग उनको रीच आउट करते हैं, उनसे सवाल करते हैं आपने उस कोर्स में ये किया था, ये किया था। वो अथॉरिटी बन गए, वो अच्छे अच्छे उनकी एक फॉलोइंग हो गई है।
और ये जो ट्रेनर्स हैं ये बेसिकली इंडस्ट्री के अंदर के लोग हैं, मतलब जिस क्योंकि यूनिवर्सिटी में काफ़ी मसला ये होता है ना कि वो बस वो प्रोफेसर हैं, पुराने हैं, उनको पता है।
मोस्टली हमारे एम्प्लॉयज़ हैं।
अच्छा,
90% हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, 10% लोग हैं जो बाहर से अपने हायर किए, वो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं।
सो दे नो एग्जैक्टली इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और उसके हिसाब से वो आपको सिखा रहे हैं।
एग्जैक्टली।
हाउ इज द अपॉर्चुनिटी राइट नाउ? अगर मैं बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स पूछूं कि यार इज द मार्केट हॉट एज इट यूज्ड टू बी 3 years ago? आई रिमेंबर 3 years ago इफ आई वर टू टॉक टू एन IT CEO लाइक योरसेल्फ, तो वो कहते थे सर जॉबें हैं, बंदा ही नहीं मिल रहा मार्केट के अंदर। इस वक्त क्या सिचुएशन है कि यू नो इज इट इक्वल, बंदे भी हैं, जॉब्स भी हैं, जैसे जैसे आती हैं वैसे वैसे फेल हो जाती हैं, या आपको कहीं ना कहीं एक तरफ और नेत्रा?
तो इंटरेस्टिंगली अगर आप मुझसे ये सवाल आज से 6 महीने पहले पूछते तो मैं आपसे कहता कि यार मार्केट का कुछ पता नहीं लग रहा है अभी, बिकॉज इट्स चैलेंजिंग,
राइट?
बिकॉज ले ऑफ्स हो रहे थे वहाँ पे फेसबुक के अंदर और गूगल के अंदर, एप्पल के अंदर भी हुए हैं बल्कि। तो आजकल जो है मार्केट बहुत डिफरेंट है, आजकल इज अ लॉट ऑफ वर्क।
अच्छा,
इज अ लॉट ऑफ वर्क। अगर आप देखें तो यू नो 10% इज हायरिंग लाइक एनीथिंग, एंड देयर अदर कंपनीज आई सी हायरिंग एज वेल। और डायनामिक्स चेंज हो रही है बिकॉज यू नो दिस वॉज इलेक्शन ईयर,
राइट?
मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड वेन इलेक्शन दिस ईयर,
राइट?
ठीक है, ऑब्वियसली जब इलेक्शंस होते हैं तो फिर गवर्नमेंट्स नए वादे करती हैं लोगों से, अपने
नया पैसा आता है, नया पैसा पंप भी होता है मार्केट के अंदर।
एग्जैक्टली, तो वो वाला सीजन है।
सो एक साइकिल, अभी 3-4 साल का एक साइकिल आप कह रहे हैं कि प्रोबेबली हाई स्पेंडिंग का होगा।
यस।
दो चीज़ें अगर मैं आपसे पूछूं, आपको तकरीबन 20 साल होने वाले हैं, 20 साल हो गए?
20 साल हो गए, 20th year है हमारा।
20th year, बड़ी सेलिब्रेशन प्लान हुई भी होगी
जी जी
सारे ऑफिसेज के अंदर।
जी जी,
कमाल, कंग्रेचुलेशंस बाय द वे। 20 years के अंदर आपने ऐसा स्टार्ट है बताया, आपने कहा कि हम एक ज़माने में गेम डेवलपमेंट भी कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे। इफ आई वुड टू आस्क यू हाउ हैज़ दी अपॉर्चुनिटी एंड रिक्वायरमेंट चेंज्ड, और इसमें मैं कॉन्टेक्स्ट डालूंगा दो एरियाज़ को, एक रीजनली के होता ना कि हमें पता है दुनिया की हर चीज़ का सबसे बड़ा जो वो रहा है बायर वो रहा है अमेरिका, राइट? तो बट सिर्फ अमेरिका में काम नहीं है, यूरोप में भी काम है, मिडल ईस्ट में भी। आजकल रियाद की बड़ी आवाज़ें आ रही हैं कि यार बस जी पैसा कमाना है तो रियाद पहुंच जाओ। सो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हाउ हैज़ द बायर चेंज्ड ओवर द लास्ट 20 years, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली हाउ हैज़ द रिक्वायरमेंट फॉर द वर्क, द नेचर ऑफ द वर्क चेंज्ड? मतलब अब एक ज़माने में वेबसाइट्स हो रही थी, तो फिर उसके बाद ऐप डेवलपमेंट में आप गए, गेम डेवलपमेंट में गए, इस वक्त वो रिक्वायरमेंट्स किधर खड़ी हुई हैं?
राइट, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बहुत। आई थिंक रिक्वायरमेंट्स जो हैं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए। तो इफ़ यू आर एन IT कंपनी और आप वही काम कर रहे हैं जो आज से 20 साल पहले कर रहे थे, या 10 साल पहले, या इवन 1 साल पहले जो कर रहे थे, तो फिर आप समझ लें कि आपका डाउनफॉल आने लगा। बिकॉज मार्केट जिस तरह चेंज हो रही है ना, अगर आपने आपको पिवट नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, तो फिर आप पीछे रह जाएंगे, राइट? इस वक्त जो है वो एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर AI इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर।
ठीक है,
ठीक है। AI इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर जो है वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि जी आपको बताएगा कि आपके पास जो बिजनेस है उसमें AI
कहाँ पे फिट हो,
कहाँ पे फिट होगी, और आपको बिजनेस में क्या फायदा होगा
बियॉन्ड द चैटबॉट, बियॉन्ड कि आपकी वेबसाइट पे ChatGPT का चैटबॉट आ जाए।
एग्जैक्टली,
बट एक्चुअली आपके डेटा को यूटिलाइज करके। मैं कल देख रहा था, देयर वाज दिस, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बट वो बड़ा मुझे फैसिनेटिंग लगा कि वो यूज वो OpenAI का इंजन ही कर रहे हैं, बट वॉट देयर डूइंग इज देयर क्रिएटिंग प्रोटीन्स फॉर मेडिसिन एंड देयर क्रिएटिंग प्रोटीन्स फॉर एंटीबॉडीज एंड स्टफ लाइक दैट। तो वो कंज्यूमर सेंट्रिक नहीं है, वो प्योरली B2B का काम है। वो मेडिकल डेटा उठा रहे हैं और उससे उठा के वो साइंटिस्ट को अलाउ कर रहे हैं टू इमेजिन डिफरेंट प्रोटीन्स।
अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं, आपको अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। लाइक मैंने खुद बैठ के आधे घंटे में एक चैटबॉट, एक एजेंट बनाया, GPT बनाया, जो कि 10Pulse की सेल्स एजेंट है। आप उससे 10Pulse के बारे में कुछ भी पूछेंगे बताएगा आपको 30-40 minutes, राइट?
तो और आपने पर्सनली बनाया?
पर्सनली बनाया मैंने।
दिस वाज अ लाइक अ लो कोड और अ नो कोड, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप,
जस्ट यूजिंग प्रॉम्प्ट्स।
इंटरेस्टिंग।
जस्ट यू नो 8009 प्रॉम्प्ट,
राइट? कम ऑन,
ठीक है। तो बेसिकली पॉसिबिलिटीज आर अनलिमिटेड। कस्टमर्स को जो है ना, दे आर नॉट लुकिंग फॉर डम डेवलपर्स। AI डेवलपर नहीं चाहिए उनको। उनको यू नो 5 साल पहले देवर AI सुख भी थी, हमने जो है वो योलो की लाइब्रेरी है, उससे जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये बंदा है, ये गाड़ी है, ये चल रही है, ठीक है, ये मूवमेंट है, ये सब उस वक्त 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं. आज भी अगर आप वही सेल कर रहे हैं तो फिर व्हाट वैल्यू हैव यू एडेड, ठीक है. आप उसको आज ये सेल करें कि आपके बिजनेस में ये कहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा, आपको कितना फ़ायदा होगा इम्प्लीमेंट करके.
बट डोंट यू थिंक कि वहाँ पर फिर अब मुझे जो एक चीज़ शिफ्ट नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि आपको टेक्नोलॉजी से ज़्यादा अब डोमेन नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब एक ये तो रिक्वायरमेंट ही फ़र्क हो गई है ना. पहले एक बड़ी डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती थी. पहले होता था कि यार वो जो बिज़नेस का बंदा है वो सोच कर आता था कि मुझे एग्जैक्टली ये कंपोनेंट चाहिए भाई, इसको प्लीज़ बना दो. मतलब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकूँ तो अब आपको कारपेंटर नहीं चाहिए, आपको आर्किटेक्ट चाहिए आजकल के ज़माने में.
कारपेंटर की डिमांड जो है अभी ख़त्म नहीं हुई है, बट आपको देखना यह है कि आप सर्विस क्या सेल कर रहे हैं. अगर आप AI की सर्विस सेल कर रहे हैं तो इस वक्त कारपेंटर कुछ नहीं कर सकता वहाँ पर, ठीक है. आपको आर्किटेक्ट चाहिए. इट्स लाइक अगर आप घर बना रहे हैं तो फिर आपको शुरू में आर्किटेक्ट चाहिए, जब आपका जो है लेआउट बन जाएगा, चीज़ें बन जाएंगी, फिर आपको आखिर में कारपेंटर चाहिए या फिर मजदूर चाहिए, जो भी चाहिए. तो यू हैव टू सी कि आप किस लेवल पे हैं अपनी जर्नी के, अपने कस्टमर के साथ, और क्या सर्विस सेल कर रहे हैं. अगर आप कोई वही वेबसाइट डेवलपमेंट सेल कर रहे हैं अभी तक, तो ऑब्वियसली फिर आपको HTML डेवलपर ही चाहिए सर.
राइट. इन अ लॉन्ग इनफ टाइम लाइन वो NVIDIA के CEO साहब जो है वो आजकल काफ़ी पंप कर रहे हैं ना अपना स्टॉक. तो वो उन्होंने बोला कि यार बस दुनिया तो फ्यूचर, वो तो उनका बस चले, तो वो तो कह रहे हैं कि अब सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ हम AI खाएंगे. उन्होंने ये बोला, उन्होंने कहा कि जी एक ज़माना था जब हम अपने बच्चों को कोडिंग की तरफ लगा रहे थे. बात हो रही थी कि 3री 4थी 5वीं जमात में कोडिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए. उन्होंने कहा जी अब वो फ्यूचर उसका नहीं है, फ्यूचर जो है वो यू नो प्रॉब्लम सॉल्विंग का है, क्रिटिकल थिंकिंग का है, आर्ट्स का है, ह्यूमैनिटीज़ का है. AI जो है वो है आपका टेक्निकल सारा काम कर लेगा. पीटर थियल साहब हैं वो भी बड़े मशहूर इन्वेस्टर हैं. उन्होंने ये बोला कि जी 90s और 2020 तक जो था वो टाइम वो मैथ्स जीनियसिस का टाइम था. इनफैक्ट उससे पहले भी जो लोग मैथ में अच्छे थे वो बेसिकली कंप्यूटर साइंस और इस सारे एरिया के अंदर बहुत वो थे. उन्होंने कहा फ्यूचर जो है वो लैंग्वेज का, कम्युनिकेशन का है. मैथ वाला काम सारा AI कर लेगी. अगेन मैं इमीडिएट फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, अभी तो बहुत चीज़ें हैं एज इट इज़ ही हैं, उसमें वो एवोल्यूशन भी आएगी. बट अगर लॉन्ग इनफ टाइम है 10, 15, 20 ईयर्स, डू यू थिंक के वाकई ऐसा है कि यू नो कोडिंग या द वे दैट वी सी डिजिटल सर्विसेज टुडे वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाएंगी.
देखिए यू हैव टू सी के थिंक टैंक्स क्या कह रहे हैं और क्या हो रहा है. ऑलरेडी दे आर डिस्कशंस इन डेवलप्ड इकोनॉमीज जहाँ पे UBI की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम. ये एक छोटी सी सब्सिस्टेंस लेवल की इनकम होगी जो लोगों को मिल जाएगी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ जॉब्स.
राइट.
ठीक है. अगर वेस्ट जो ये बल्कि ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये अफोर्ड कर सकती हैं अपने लोगों को बगैर काम के पैसे देना, तो बट दे आर थिंकिंग अबाउट दैट. हमारे यहाँ जो है वो बेसिकली हमें देखना यह है कि हम किस लेवल का काम कर रहे हैं. अगर हम डिजिटल काम कर रहे हैं तो फिर हमें AI को इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने काम के अंदर. If you don't use AI to perform our tasks, daily tasks, फिर हम जो है extinct हो जाएंगे. Okay. अगर नहीं कर सके. हाँ, अगर
आप can you explain that in a term of a average worker जो IT industry में काम करता है कि उसको AI किस तरह से इस्तेमाल करके अपने आप को बेहतर करना चाहिए.
राइट. सो देखें आजकल जो है वो अगर आप यू आर द बेस्ट, लेट्स से यू आर द बेस्ट पाइथन प्रोग्रामर, ठीक है, और आप कहते हैं जी मुझसे अच्छा कोड नहीं, और बाकी ये फैक्ट भी है कि आपसे अच्छा कोड नहीं लिख सकता. अगर आपको मैं एक प्रोजेक्ट देता हूँ और आप अपना बेस्ट टैलेंट लगा के वो एक प्रोग्राम लिखते हैं पाइथन में, वर्सेस एक जूनियर प्रोग्रामर जो कि अभी फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज आया है एंड ही इज़ यूजिंग कोपायलट या ChatGPT या फिर कोई और AI जिससे वो सेम प्रोग्राम बहुत जल्दी लिख पा रहा है और आप टाइम ले रहे हैं, तो फिर वो उसको प्रेफर किया जाएगा.
अच्छा.
मार्केट में
तो इट्स अ प्योरली प्रोडक्टिविटी गेम ना.
एग्जैक्टली.
कि कौन कितना ज़्यादा लिमिटेड टाइम में प्रोडक्टिव है. वो जो जीनियस था ना कि यार मैं 4 दिन कुछ नहीं करूँगा लेकिन मुझे एक जीनियस आएगा और मैं उसको कर लूँगा.
तो इट्स अ कंप्लीट चेंज ऑफ माइंडसेट को शिफ्ट करना है. जो लोग इस लाइक यू नो मैं एग्जाम्पल देता हूँ अपने लोगों को कि जब टाइपराइटर आया था, राइट, तो लोग कहते रहे हम तो हाथ से लिख लेते हैं, जल्दी लिख लेते हैं, और इसमें तो हमें टाइम लग रहा है, हमें तो समझ नहीं आ रहा कैसे कौन सा लेटर कहाँ पे. बट वो उस वक्त की बात थी. अब आज देख लें, अब आज जो है वो साइपरेटर के बगैर के काम नहीं होता. तो इनफैक्ट उस वक्त भी अगर आप सीख लेते तो फिर आप बहुत जल्दी कर सकते थे और आप गलतियां से सुधार सकते थे. चीज़ें बेनिफिट्स इसके हैं ना. तो लोगों को ये कंप्लीट माइंड शिफ्ट करना पड़ेगा कि जी मैनुअल काम से अब AI का काम इस्तेमाल करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है ना वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा. दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जी जो काम आप हाथ से करते हैं उसको जो है ना अभी इसकी लाइफ बाकी है.
अच्छा.
तो इफ़ यू आर अ प्लम्बर, इफ़ यू आर अ यू नो इलेक्ट्रिशियन, ये अभी रोबोट्स को आने में थोड़ा और टाइम लगेगा.
राइट.
तो आ रहे हैं लेकिन AI जल्दी आ रही है.
जो प्रॉब्ली B2B वाले पहले आ रहे हैं, फैक्ट्रियों वाले तो आ जाएंगे जो कि रिडंडेंट सेम काम कर रहे हैं, बट जो स्पेशलाइज्ड काम है कि आप गए आपने देखा यार आपका पाइप लीक है सर क्योंकि उसमें ग्लू लगानी है, वो वाला रोबोट विल टेक सम टाइम. मेक सेंस. थोड़ा सा मैं अभी लोकल इंडस्ट्री की तरफ आऊँगा वापस, देन आई विल कम बैक टू डे ड्रीमिंग अबाउट द फ्यूचर अगैन. पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर अगैन जब बात हो रही थी टैलेंट की, राइट, सो मैंने खुद एक पिछले दिनों वीडियो की एंड आई वाज स्पीकिंग अबाउट के यार 10 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट के लिए 2,80,000 इंजीनियर चाहिए. पाशा कहता है 25,000 सालाना बनता है, 2,500 जो है वो एम्प्लॉयबल है. अगर हमने अगर मैं ओवरऑल होलिस्टिकली देखूं, इंडिविजुअल कंपनी से मैं बात करता हूं, मुझे यही सुनने को मिलता है कि यार हम तो बड़े अच्छे हैं, हमें तो बंदा चाहिए होता है, हम बंदा उठाते हैं, हम उसको ट्रेन करते हैं, सब सेट है. बट अगर मैं इंडस्ट्री एट लार्ज देखूं तो जो हमारा रॉ मटेरियल है विच इज़ द ह्यूमन रिसोर्स, वो डेवलप ही नहीं हो रहा, वो बड़ा थोड़ा है. इंडिया में ऑन द अदर हैंड जब हम देखते हैं, वो पिछले दिनों एक ट्विटर पर बड़ी अच्छी पिक्चर वायरल हो रही थी, वो लिटरली वो ड्राइव अराउंड कर रहे हैं और वो प्लाजा आफ्टर प्लाजा जो है ना वो बोर्ड्स लगे हुए हैं कि IT ट्रेनिंग सेंटर, तो इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर, तो दिस. तो प्राइवेट सेक्टर बेसिकली केम इन, और जहाँ पर आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया का जो पब्लिक सेक्टर है वो बहुत बुरा है, बिकॉज वो देव डन अ रिमार्केबल जॉब विद द IITs एंड यू नो एवरीथिंग एल्स, बट जहाँ पर गैप्स थी वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बेसिकली जम्प्ड इन एंड दे वेंट नट्स. राइट. अब पाकिस्तान में स्पेशली विद द डॉलर बीइंग फ्री फ्लोट, स्पेशली विद द आइडिया कि अब हमारी इकॉनमी जो है वो अपनी नेचुरल स्टेट में वापस जा रही है, तो वो अब इंसेंटिवाइज कर रही है, वो कह रही है कि यार अनप्रोडक्टिव तरीके से आप नहीं चल सकते, तो अब बहुत आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं. मतलब मैं अगेन एग्जांपल देता हूँ कि मेरे गार्डनर उस दिन आए, उन्होंने अपने बेटे को साथ लेकर आया, उन्होंने कहा यार इससे वो नहीं हो रहा, मैट्रिक पास नहीं हो रहा, तो इसको काम पे लगाना है. तो इसको किसी ने गली में बोला है कि यार अमेज़ॉन का कोर्स कर लो 40,000 का, तो $500 महीने का आ जाया करेंगे. अच्छा मैं उनकी शक्ल देख रहा, मैं कहा कि अंकल आपसे बच्चे से मैट्रिक नहीं हो रहा तो वो अमेज़ॉन में क्या करेगा. बट मेरे व्हाइल आई सेड दैट आई वाज एक बल्ब आया कि यार व्हाट वी आर सीइंग नाउ इज़ ए डिमांड दैट डिडंट एग्जिस्ट बिफोर. पहले ये होता था इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और जो बेचारा कहीं नहीं हुआ तो वो कंप्यूटर साइंस में आ गया. अब आपको नीचे से उठती हुई एक आवाज़ आ रही है जिसमें इकोनॉमी इज मेकिंग इट कंड्यूसिव टू ए चेस द डॉलर, बी यू नो एक ऑटोमेटिकली जो डॉलराइज्ड या जो IT वाला लड़का है ना वो अब पहले पिछले 10 साल वो होता था कि वो बस कामरान बेसमेंट में बैठा फारिग पता नहीं क्या कर रहा होता है, अब वही कामरान है जिसका कोई बाकी सब जो है वो रो रहे हैं महंगाई से, कामरान मजे में क्योंकि उसका डॉलर आ रहा है. तो सोसाइटी एट लार्ज हैज बिगन टू इंसेंटिवाइज यू नो पीपल मूविंग टूवर्ड्स दिस एरिया. बट काफ़ी दफ़ा जब लोग आते हैं अगेन, जिस तरह कल वो साहब आए UI UX वाले या और लोग आए, तो वो इस चीज़ में फंसे हुए होते हैं कि यार हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं, हम सीखना भी चाहते हैं, तो जिसको एक्चुअली आता है वो अपने काम में लगा हुआ है और जनरली हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है. हाउ डू यू सी दैट ओवरऑल होलिस्टिक इकोसिस्टम ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, बोथ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ IT एंड डिजिटल सर्विसेज, एंड दूसरा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ AI दैट वी जस्ट स्पोक अबाउट, के जहाँ पर फ्यूचर में क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए, हमारा जो इसका एजुकेशन सिस्टम है दैट्स नॉट वेरी कंड्यूसिव टू यू नो अ वेरी ओपन माइंडेड होलिस्टिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच दैट टॉक्स अबाउट डोमेन्स. जो IT वाला है वो IT करता है, उसको पता ही नहीं है कि मेडिसिन में क्या हो रहा है, लॉ में क्या हो रहा है, वगैरह वगैरह. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट?
इट्स अ लोडेड क्वेश्चन, यू आस्क्ड अ लॉट इन वन क्वेश्चन, बट आई विल ट्राई टू यू नो एड्रेस दिस. देखें, एक तो ये कि हमारा करिकुलम थोड़ा सा जो है ना वो फोकस्ड होता है कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं. जो US का करिकुलम है वो लूजली हेल्ड है, ठीक है. UK हम चूँकि UK को फॉरवर्ड फॉलो करते हैं तो हमारा जो है ना वो क्लोजली हेल्ड है. UK में भी ऐसे ही होता है कि जी अगर आप इंजीनियरिंग करें तो इंजीनियरिंग ही पढ़ेंगे. फिर आप US में जो है आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ये भी कर लें, वो भी कर लें. फिर वो आपका वो उसका ऑप्शन इसलिए होता है कि वो आपका एक्सपोजर बढ़ाता है, आपको जो है ना होलिस्टिक व्यू देता है. तो हमारे यहाँ जो है वो इसलिए लोग फंस जाते हैं कि अगर किसी ने सिविल इंजीनियरिंग की है तो आप वो ज़िंदगी भर कुछ नहीं कर सकता, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के और सिविल इंजीनियरिंग के अलावा या टीचिंग के अलावा. तो वो हमें वो एक ग्रेटर लेवल पे देखना होगा कि यार हमें क्या हमने अपना एजुकेशन सिस्टम सही करना है, तो कौन पॉलिसी बनाएगा, कौन कैसे करेगा उसको. दूसरा है पर्सनल लेवल. पर्सनल लेवल पे आई थिंक मैं स्ट्रांगली बिलीव कि जिसने जो करना होता है ना वो कर लेता है. राइट, आई गिव योर एग्जांपल कि भाई आपने जो करना था वो आपने कर लिया. ठीक है, जो आप अगर आपने सॉफ्टवेयर में जाना होता तो आप चले आते. राइट, यू डिडंट हैव एजुकेशन फॉर मीडिया डिजिटल मार्केटिंग आप, लेकिन आपने किया. तो इट्स अबाउट वन ओन पैशन एज वेल. हमारे यहाँ जो है ना वो लोगों को ये सिखाया जाता है कि जी जॉब पकड़ो पैसे कमाने के लिए. अगर हम उनको ये सिखाएं कि यार ना वो जॉब करो जो तुम्हें काम पसंद है तो फिर वो खुद ब खुद एक्सेल करेगा. राइट, हमारे यहाँ जो है ना ये एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है. और मैं एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाता भी हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि यार जो आपको अगर आपने बिजनेस स्टार्टअप करनी है तो वो स्टार्टअप करो जो आपको काम अच्छा लगता है, जो आपको दिल से आपको आवाज़ आती है, पैशन है आपका. देन वर्क बिकम्स पैशन, फिर आप सीख लेते हैं कुछ भी आपने सीखना हो. एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती आपको. लेकिन अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं पैसे कमाने के लिए, जॉब करना चाह रहे हैं पैसे कमाने के लिए, फिर आप स्ट्रगल ही करते रहते हैं ज़िंदगी भर. तो आई थिंक वो है. तो आई हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल जो कि इन्होंने कोई कॉलेज की डिग्री नहीं थी, कुछ नहीं था. आज कैनेडा में जो है वो बड़ी कंपनीज़ के जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स लीड आर्किटेक्ट बने हुए.
सो यू सेइंग बेसिकली कि ये अब ओपन मार्केट डेमोक्रेटाइज तरीके से खुद ही से टैलेंट प्रोड्यूस करेगी, उसको आप ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं कर सकते.
इट्स सेल्फ वो है ना मोटिवेशन. कि आपके अंदर कितना मोटिवेशन है. कहते हैं कि यार अगर आप चाहने से तो खुदा ही मिल जाता है. तो अगर आप चाहें तो सही, क्या आप क्या क्या करना चाह रहे हैं. अगर आप सिर्फ कंप्लेन ही करेंगे कि यार ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ तो फिर अपॉर्चुनिटीज ओपन है. मैंने कहा ना कि यूट्यूब पे हर चीज़ से कोर्स अवेलेबल है. उर्दू में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, पंजाबी में भी अवेलेबल है. राइट, तो आप कितना टाइम यूट्यूब पे जाके वीडियोज़ देख रहे हैं वर्सेस टिकटॉक पे टाइम लगा रहे हैं वर्सेस यू नो आप एजुकेशन लेना चाह रहे हैं. तो एंड दे कोई ऐसा देखें, या तो आप किताब पढ़ लें या आप वीडियो देख लें या आप कोई पॉडकास्ट सुन लें. यही है तरीके लर्न करने के. वरना आपके अंदर गोल कितनी पी सकते हैं आप कि जी मैं अच्छे प्रोग्रामर कैसे बन जाए, ठीक है, या आई टी प्रोफेशनल कैसे बन जाए. तो यू हैव टू हैव इनर यू नो मोटिवेशन.
मेक सेंस. आपका जो टैलेंट है उसमें चर्न आया रिसेंटली, छोड़ के जा रहे हैं, बाहर छोड़ के जा रहे हैं, दूसरी कंपनीज में जा रहे हैं, रिमोट वर्क पे जा रहे हैं?
राइट, सो डेफिनेटली जब कोविड के बाद जो है सिचुएशन चेंज हो गई है. हमारे पास जो रिटेंशन था वो दे वॉज मोर देन 50% हमारा रिटेंशन था इन द पास्ट. लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि लोग जो हैं वो घर रिमोट घर से निकलना नहीं चाह रहे.
राइट
राइट, और ये एक लॉन्ग रन में बड़ा जो है ना लोगों को हर्ट करेगा. क्योंकि वी हैव सीन मैनी पीपल जो कि हमारे पास से जाते हैं रिमोट जॉब के लिए, मोस्टली रिमोट जॉब या फिर US या फिर बाहर, US, कैनेडा, UK, मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे लोग जाना चाह रहे हैं वो जा रहे हैं. और अच्छी बात है, जाएँ जाके कुछ करें अपने लिए, मुल्क के लिए, फिर यू नो और कंपनीज बनाएं करें, अच्छी अच्छी बात है. लेकिन जो लोग जा रहे हैं रिमोट जॉब के ऊपर वो जो है वो 6 महीने ऑफिस भी आ रहे हैं. और उसका रीज़न क्या है जी, कि जी मिसकमिटमेंट हो रही है. जो बंदा कहीं बैठ के हायर कर रहा है, क्या पेपर वर्क है, क्या करेंगे, व्हाट्स दी यू नो ऑथेंटिसिटी क्या है कि यार वो बंदा वैसे देगा भी नहीं देगा. अभी रिसेंटली एक बंदा हमें ज्वाइन कर रहा है, उसने हमको पूरे कम्युनिकेशन दिखाई है कि 2 महीने से उसको सैलरी नहीं मिली है, रिमोट जॉब है. राइट, और जो है वो स्ट्रगल कर रहा है कि यार उसके उससे बात मीटिंग का टाइम ही नहीं मिल रहा उसको, मिलना चाह रहा है उनसे. तो इस तरह की सिचुएशन है. फिर लर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं है. अब आप आइसोलेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, फिर आप जो काम आपको आता है वही कर रहे हैं, आपको दाएँ बाएँ कुछ नहीं है. फिर कभी आपको रात को बुला लिया, कभी दिन को बुला लिया कि आज डिप्लॉयमेंट रात में आओ, यानी मैं तो अवेलेबल नहीं होता रात में करें. तो इस तरह से जो है वो मिसकमिटमेंट हो रही है, फिर लोग वापस आ रहे हैं. तो इसलिए जो चर्न है वो अब कंट्रोल हो गया है. शुरू में काफ़ी था, कोविड के बाद बहुत ज़्यादा था, अब काफ़ी कंट्रोल हो गया है. पीपल आर रियलाइजिंग कि यार इट्स इंपॉर्टेंट टू वर्क विद पीपल, कोलेबरेट, लर्निंग, एक टीम वर्क के ऊपर जो है ना इंपॉर्टेंस की लोग रियलाइज हो रही है. ऑब्वियसली फिर बेनिफिट्स हैं, सब कुछ है, ये सब कुछ ऐड होता है. तो या
व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द टैक्स जो गवर्नमेंट ने अभी लगाया है, उसके ऊपर बड़ी शोर भी मच रहा है कि फॉर्मल सेक्टर तबाह हो जाएगा. क्योंकि एक एवरेज बच्चा जो कि फॉर्मल सेटिंग में काम कर रहा है, अगर वो सेम अमाउंट पे काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल $2,000 उसको यहाँ से मिलेंगे वो टेक पी क्या टर्म्स में, और उसको $2,000 की बाहर से जॉब मिलती है, तो वो $2,000 बाहर वाली प्रेफर करता है क्योंकि टैक्स ब्रेक मिल जाती है उसको, कंपनी से उसका टैक्स कटता है $2,000 का, या ₹5,00,000 अगर मैं लगाऊँ तो ₹5,00,000 के ऊपर ₹1,15,000 टैक्स कट रहा है। एंड दैट डजंट मेक एनी सेंस कंसिडरिंग के ₹5,00,000 क्या ही निकालते हैं पाकिस्तान में आजकल। Have you seen that as a major reason as well, कि जिसकी वजह से लोग अब परेशान होना शुरू हो गए हैं? What are your thoughts generally on the taxation and how that's going to impact the IT services sector?
I think काफ़ी बड़ा मसला है IT companies को, जो है जो बड़ी companies हैं, जो छोटी companies हैं they find a work around. And you know the work around is कि भाई आपको बाहर से पैसे
hold को करके आप
कर दिए, बड़ी companies ये नहीं कर सकती, तो this is going to further you know impact growth of large organizations. क्योंकि अब जो है वो आपका जो अगर आपको रिटेन करना है अच्छा टैलेंट, दे आर आस्किंग कि आप हमें वही पैसे दें जो हमें बाहर से मिल रहे हैं, ठीक है, टेक होम, और टेक होम वो करने के लिए आपको जैसे अगर उनकी 3,000 टेक होम है तो आपको 4,000 देने पड़ेंगे, अगर आप 4,000 दे रहे हैं
वो बिजनेस केस आउट है,
तो बिजनेस क्या हुआ, तो बिजनेस केस ही ख़त्म हो गया। तो बेसिकली नाउ यू वुड गो फॉर यू नाउ श्रीलंका देख लें, बांग्लादेश देख लें, राइट, इंडिया देख लें, नेपाल देख लें, नेपाल बड़ा हॉट हुआ है आजकल।
अच्छा,
तो दीज ये छोटी छोटी मशरूम जो है ना जगहों से जो है ना लोग आना शुरू हो गए, बिकॉज नाउ यू सी के यार कैसे आपने जो है ना, देखें जो आप पैसे कमाते हैं फॉर अ प्रोजेक्ट, लेट्स से अगर आप एक $10,000 कमा रहे हैं एक प्रोजेक्ट के, उसमें से $3,000 जो है वो $4,000 जो है वो रिसोर्स कॉस्ट होती है, फिर आपका $3,000 जो है आपके जो है वो ओवरहेड्स होते हैं, रेंट हो गया आपका, सपोर्ट स्टाफ हो गया, सब कुछ हो गया, बाकी का जो बचता है आपको बस 30% वो आपका जो है वो एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उससे आप प्लाजा बना सकते हैं, उससे आप उससे कुछ आप कंपनी एक्वायर कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, वो आपका या लोगों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप वो वाला पार्ट निकाल देंगे तो फिर आप कैसे जो है वो ग्रो करेंगे? यू विल जस्ट बी यू नो पासिंग थ्रू कि भाई आपने पैसे कमाए, कुछ उनको दे दिया, कुछ रख लिया, और फिर चलता रहा ऐसे, तो ये फिर ग्रोथ ख़त्म हो जाएगी और फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तो या वी हैव टू यू नो लुक एट के बैलेंस होना चाहिए कि अगर आप कहीं से ही पैसे आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, अगर आप आईटी को प्रमोट कर रहे हैं, अगर आप आईटी वर्कर हैं, किसी भी कहीं भी काम कर रहे हो आप, तो आपका टैक्स सेम होना चाहिए।
डू यू थिंक के अभी आपने जिस तरह ये बड़ी लोडेड सी बात की है कि आईटी सेक्टर है सबका टैक्स सेम होना चाहिए, तो इसमें दोनों साइड्स पे हो सकता है, एक पे ये हो सकता है कि आईटी वर्कर जो है वो उसकी सैलरी में उसको बेनिफिट मिले या टैक्स ब्रेक मिले, दूसरा ये हो सकता है कि यार जो रिमोट वर्क कर रहा है उसके पैसे उसके ऊपर टैक्स कटे, राइट, सो नॉर्मलाइज होगी मार्केट वन वे होती होता। मेरा ज़ाती ख्याल पर्सनली ये है कि सैलरी के ऊपर जनरली वैसे ही बहुत ज़्यादा टैक्स इस वक्त लगा हुआ है, और अगर आप उसको गवर्नमेंट जो है वो टैक्स करती है तो वो आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर आर्बिट्राज कम कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वायबिलिटी उसकी सेल करने की कम हो जाती है। बट इफ़ आई वर टू आस्क यू, डू यू थिंक देयर इज़ अ न्यू मॉडल नाउ इन द मेकिंग इफ दिस टैक्स ऑन सैलरीड इंडिविजुअल्स कंटिन्यूज, वेयर यू बेसिकली एवरी कंपनी इज मेड ऑफ टू कंपनीज, वन इज़ अ कोवर्किंग स्पेस एंड वन इज़ एन आई टी सर्विसेज प्रोवाइडर बेस्ड आउट ऑफ दुबई, एंड द एम्प्लॉईज आर एम्प्लॉयड बाई द आई टी सर्विसेज कंपनी इन दुबई वर्किंग रिमोटली पार्टनर्ड विद देयर यू नो कोवर्किंग स्पेस, और वहाँ पर वो जाके हाइब्रिड या फुल टाइम मॉडल के ऊपर वो एक्टिवली आ रहे हैं, राइट, सो लॉजिकली चलें बहुत बड़ी कंपनीज ओपनली आके वो ना भी कर सकें, बट जो आपकी 50-100 बंदे वाली कंपनी है वो एक बेसिक सा वर्क अराउंड है कि आपने पैसा सारा का सारा बाहर के, अब रिमोट ही है ना, तो वो अपनी लोकल कंपनी के साथ रिमोट कर लो, और इनफैक्ट बहुत सारे जो ये आपके आई बिलीव रिमोट बेस या और इस तरह की कंपनीज हैं वो ऑलरेडी इस तरह के मॉडल्स में वो कर रही थी कि जी हम इसमें बस लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं और कनेक्ट करके यू नो वी जस्ट वी हेल्प एंड सपोर्ट दैट। और इसी के साथ आई वुड ऐड अनदर एलिमेंट टू इट कि जहाँ पर आपको ये तो टैक्सेशन की वजह से एक वर्क अराउंड आ रहा है, बट जहाँ पर अब पोस्ट कोविड ग्लोबली एक सेंस आई है कि यार वी कैन हायर पीपल फ्रॉम यू नो हु आर वर्किंग फ्रॉम होम, तो उसमें दी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी सडनली यू बिगिन टू चिप ऑन दैट, राइट, कि अगर एक बंदा है वो बैठ के एक थर्ड पार्टी एक मिडिल मैन को दे रहा है पैसे कि यार ये लो तो मेरे से पैसे लो और फिर तुम बंदे मैनेज करो, तो वो कहता है कि यार यू नो व्हाट व्हाई नॉट अगर मैं 3,000 दे रहा हूँ, 3,000 के बाद इस बंदे ने 1,000 आगे अगले को देने हैं, तो मैं 1,500 दे के डायरेक्ट अगले से क्यों ना बात कर लूँ। तो हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ दी ऑफ द करंट आर्बिट्राज मॉडल जो एग्जिस्ट करता है, बोथ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टैक्सेशन एंड द पोटेंशियल होल्ड को एंड को वर्किंग स्पेस मॉडल एंड ऑल्सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ के डायरेक्ट टू यू नो एम्प्लॉई रादर देन थ्रू अ मिडिल मैन?
आई थिंक ये एक ट्रांजिशनरी पीरियड है फ्रॉम कोविड टू एआई, आई वुड से कॉल इट के ये एक ट्रांजिशनरी पीरियड है कि इस वक्त जो है पीपल आर नॉट श्योर
व्हाट्स गोना हैपन,
व्हाट्स गोना हैपन, तो दे
कयास रहियां बहुत ज्यादा हैं।
एग्जैक्टली, तो जो कंपनीज हैं जो जो मिडिल ईस्ट में या यूएस में या कहीं भी बैठी हैं जिनका कम बजट है, दे आर ओके टू डैबल इनटू यू नो ये डायरेक्ट हायरिंग वगैरह, बट दिस इज नॉट गोइंग टू स्टे।
अच्छा,
या फॉर श्योर
इट्स नॉट वर्किंग आउट, यू थिंक
इट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर इन द लॉन्ग रन? बिकॉज देखें दो तीन चीज़ें हैं, जब कंपनी को जो है ना वो कोई बड़ा काम करना होगा, उन कंपनी को जो जो आउटसोर्स कर रहे हैं, वो देखेंगे सिक्योरिटी, व्हाट इज़ द सिक्योरिटी कि आप किसी से काम करवा रहे हैं तो वो क्या आपका कोड किसी को शेयर नहीं कर रहा या आपके कोड से एक और कंपनी नहीं बना रहा, राइट, एक और नई कंपीटिंग प्रोडक्ट खड़ी नहीं कर रहा, एंड वी सीन केसेस लाइक दैट, राइट। तो अभी तो ये एक इंटरिम सोल्यूशन है जो काम कर रहा है, लेकिन आई थिंक ये जो है वो
लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा,
एक साल डेढ़ साल के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, ये बहुत कम हो जाएगा, मिनिमल हो जाएगा, बिकॉज ऑल यू नीड इज अ फ्यू केसेस, एक दो केसेस होंगे फिर लोगों को पता जाएगा वो यार ये हो रहा है।
हाँ, मतलब ट्रस्ट का पर्टिकुलरली इन द एज ऑफ एआई एंड डेटा, साइबर सिक्योरिटी इज अ बिगर क्वेश्चन मार्क, राइट, एंड यू कांट रियली ट्रस्ट क्रॉस बॉर्डर टैलेंट के वो चाइनीज स्पाई रहो, यू नो, सो यू नीड सम सॉर्ट ऑफ वो, क्योंकि आई थिंक जिस तरह आप लोगों के केस में भी ये होता है कि योर कॉन्ट्रैक्ट्स आर डायरेक्टली, अगर यूएस है तो यूएस ही कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो यू स्टिल लाइबल एज एन ऑर्गेनाइजेशन
ओवर देयर। एब्सोल्युटली, या मैंने आपको बताया था ना कि हम कभी कभी अक्सर हमें पुलिस सर्टिफिकेट भी देने पड़ते हैं लोगों के, भाई ये वो है। तो आई थिंक जो वर्क अराउंड है, अगेन वो भी एक एक ट्रांजिशनरी होगा, ठीक है, या वी विल सी सम मशरूम कंपनीज स्टार्ट डूइंग दैट, बट हर हर दौर में होता है, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नई ट्रांजिशन होती है, कोई भी नई चीज़ आती है दुनिया में, तो लोग जो होते हैं वो कुछ उसमें दे फाइंड अ वे
पिवट
टू अर्न सम क्विक मनी,
राइट,
ठीक है। अगर आपने देखा होगा कि जी कुछ जब इम्पोर्ट्स में कुछ होता है तो कुछ चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, उससे पैसे बनना शुरू हो जाते हैं, कुछ आप एक्सपोर्ट, तो ये दे आर एक्सपर्ट्स, सम पीपल आर एक्सपर्ट्स इन दिस, वो होगा, बट दे आर नॉट आईटी प्रोफेशनल्स, वो सॉफ्टवेयर कंपनीज नहीं है। आई वुड कॉल देम के जी वो भी मौका शनाज लोग हैं जो पैसे कमा रहे हैं, दे आर नॉट आईटी इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है वो,
राइट।
तो आई वुड से कि नकालों से होशियार हैं कि जी कौन क्या कर रहा है, पीपल मे लुक लाइक अ सॉफ्टवेयर कंपनी बट दे मे एंड यू नो वी डूइंग समथिंग एल्स, हमें हमने पास में हिस्ट्री में देखा है कैसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो लेट्स नॉट बी डिसइल्यूजन्ड कि भाई फ़ला ये कर रहा है फ़ला ये कर रहा है, फॉर क्विक विन, इफ़ यू आर हेयर फॉर शॉर्ट रन क्विक विन,
वो साल दो साल के लिए वो कुछ एक्स्ट्रा $2-4 million निकाल भी लेगा, लेकिन उससे
$2-4 million तो बहुत ज़्यादा कह रहे हैं,
$2.5 lakh। Do you think, अभी रिसेंटली बड़ा शोर मचा लिंक्डइन के ऊपर कि यार ये कंपनीज हैं जो कि वर्क अराउंड, अगेन इस तरह के वर्क अराउंड के ऊपर, वो SSN फ्रॉड के ऊपर काम कर रही हैं और इस तरह की चीज़ों पे काम कर रही हैं, व्हाट्स योर टेक ऑन यू नो रनिंग अ कंपनी लाइक दैट? डू यू थिंक अगेन कि वो एक शॉर्ट टर्म प्ले है, वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा स्केल नहीं कर सकेंगे, वो अगर मैक्सिमम भी कर लें तो चलो यार 500,000 तक तो कर लिया, लेकिन जब आपने बड़े, क्योंकि अगर आप SSN वाली चीज़ कर रहे हैं, असेंशली आप कर क्या रहे हैं कि आप रिमोटली वर्कर हायर करवा रहे हैं ना हाई पेइंग मार्केट, और उसके एवज आप एक लो पेइंग यू नो थर्ड डेवलपिंग वर्ल्ड का रिसोर्स लगा देते हैं। कंपनी से अगर आप बात करेंगे तो वो कहेंगे जी हमारे तो बड़ा लीगल वर्क अराउंड है, हमने सारा कुछ उसका लीगल सॉर्ट आउट किया, श्योर मे बी उन्होंने किया हुआ भी हो। डू यू थिंक कि यू कैन क्रिएट लाइक 30,000-40,000 पीपल कंपनी ऑन द बैक ऑफ सच मॉडल्स?
Absolutely not. देखें ये जो चीज़ें हैं ना, ये एज एन इंडस्ट्री, एज अ बिजनेस, आई कंडेम दिस कम्प्लीटली, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप जो है ना क्रेडिबिलिटी ख़राब कर रहे हैं। मैं अपने लोगों को भी बोलता हूँ जो हमारे इम्प्लॉयज़ हैं कि यार अगर आप किसी कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं ना तो आप उसको दयानतदारी से काम करें, बिकॉज ये आपका या मेरा नहीं है, ये पाकिस्तान का नाम चल रहा है। कि आप यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, आपको मोहम्मद क्या नाम है आपका, आपको नोबडी केयर्स,
आपके एम्प्लॉई का नाम जो एक्चुअल एम्प्लॉई है वही फ्रंट फेसिंग होता है कस्टमर के साथ, वैसा या ऐसा होता है कि बॉब है यार आज तुम्हारा नाम बॉब है इस प्रोजेक्ट पे?
नहीं नहीं, हमने ये डे वन से हमने ये डिसाइड किया था कभी भी हम छुपाएंगे आइडेंटिटी, ऑल आर कस्टमर्स नो के लोग कहाँ पे हैं, कुछ लोग पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में भी कहाँ से काम कर रहे हैं उनको पता होता है, दे हैव पर्सनल रिलेशनशिप विद ऑल ऑफ देम, इनफैक्ट लोग जो हैं लोग शादियों पे बच्चों पे जो है वो गिफ्ट्स आते हैं बाहर से,
अच्छा
तो इस लेवल की ट्रस्ट और रिलेशनशिप है, और ये जो काम हो रहा है जो काम हो कर रहा है वो एब्सोल्युटली जो है वो पाकिस्तान का नाम ख़राब कर रहा है, अपना अगेन पर्सनल फ़ायदा हो जाएगा आपको कुछ हो जाएगा, लेकिन इंडस्ट्री जो है ना वो सही नहीं रहेगी, इससे डूब जाएगी।
राइट, देर आर सर्टेन कंपनीज पर्टिकुलरली, वो बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं वो ज़रा बुटीक की तरह काम करती हैं, कहते हैं यार हमारा लेट से 50-100 हाई क्वालिटी टैलेंट है और हमने उसके ऊपर सही इन्वेस्ट किया हुआ है और उसकी वजह से हम प्रीमियम सर्विसेज बेचेंगे, जाहिर हर किसी का अपना मॉडल होता है। उनसे उन्होंने रिसेंटली जब ये हालात आउट हुए तो उन्होंने काफ़ी हद तक अपनी जो सैलरीज थी, क्योंकि एसेंशियली इट इज़ ए डॉलर डोमिनेटेड बिजनेस राइट, सो उन्होंने अपनी सैलरीज को पैक कर दिया, उन्होंने कहा कि यार ठीक है तुम प्रोटेक्टेड रहोगे बोथ इन टर्म्स ऑफ द डिवेल्यूएशन एंड पोटेंशियली अगेन अगर आप होल्ड को मॉडल के थ्रू कर रहे हैं विच इज़ देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट मॉडल, इलीगल तो नहीं, थियोरेटिकली नहीं है, रिमोट वर्कर है तो आप भी एक रिमोट कंपनी में आई कर रहे हैं तो पोटेंशियली अगर हम बाहर की कंपनी से डायरेक्ट कर लें तो तुम्हें डॉलर में ही आया करेगी और तुम्हें टैक्स फ्री आया करेगी। डू यू थिंक के दैट दैट इज़ सस्टेनेबल, आई मीन टेक्निकली स्पीकिंग तो प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, आप एक कस्टमर से आप सारा डॉलराइज करते हैं तो आप कहते हैं कि यार $3,000 का मेरा बंदा है, मैं $1,000 अगर उसको दे रहा हूँ तो मैं उसको बजाय इसके कहूँ कि यार तुम्हारी $2,50,000 सैलरी है, मैं उसको कहूँगा तुम्हारी $1,000 सैलरी है, अब तुम्हें इसकी टेंशन नहीं खानी चाहिए कि यार मुल्क में डॉलर ऊपर जा रहा है डॉलर नीचे जा रहा है, तुम बस चुप करके काम पे आओ काम करो, डॉलर ऊपर जाएगा तुम्हें तो टेंशन नहीं है। डू यू थिंक के यू वुड यू नो लुक इन टू दैट इफ़ फॉर एग्जाम्पल अगर डॉलर बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होता है ये मसाइल चलते हैं, या डिड यू एट एनी पॉइंट लुक एट दैट व्हेन चर्न वाज हैपनिंग, वॉज देर अ डिमांड फ्राम पीपल के यार आप, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसे हुआ कि डॉलर 140 से 280 पे चला गया और एम्प्लॉई तो बेचारा रोने वाला हो गया था कि यार हमारे तो हालात टाइट हो गए हैं, जो कंपनी ओनर्स थे दे वर एबल टू मेक मार्जन्स ऑब्वियसली, बट एम्प्लॉई जो है वो वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई, सो दे सेड यू नो पेग आर पेस टू द डॉलर। उसकी काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि बाकी जिस तरह लेट्स से इजिप्शियन मार्केट है या बाकी मार्केट्स हैं वहाँ पर ऐसा नहीं होता, वहाँ पर एक्चुअली अगर डॉलर इजिप्शियन मार्केट में रिसेंटली पाउंड उनका 50% गिरा है तो वो अपॉर्चुनिटी क्रिएटर होता है बेसिकली, कि अगर 2,50,000 की सैलरी है और अगर 250 से 500 पे चला गया डॉलर तो दैट मीन्स फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ मनी यू कैन नाउ हायर टू पीपल, सो बेसिकली दैट इज़ वेयर द ग्रोथ कम्स इन, के बजाय इसके कि मैं डॉलर की एज इट इज़ जो है ना वो ट्रांसफर करूँ टू माई एम्प्लॉई, जो मेरे पास एक्स्ट्रा मार्जिन आता है उससे मैं नए टैलेंट को बिल्ड करता हूँ, तो दोनों साइड्स में आई डू सी मेरिट इन बोथ बोथ साइड्स ऑफ द आर्गुमेंट। व्हाट आर योर थॉट्स इन दैट इन इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेगिंग द पेस टू द डॉलर?
राइट, नाउ दिस वाज अ बिग थिंग कोविड के बाद जो था वो काफ़ी लोग जो हैं वो लिंक्डइन के ऊपर भी इधर उधर भी जो है लोग काफ़ी आवाज़ खड़ी कर रहे थे कि यार ये होना चाहिए। देखिए इन प्रिंसिपल यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या बिजनेस मॉडल क्या है, ठीक है, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो इसका एक मॉडल होता है कि जी मैं इतना कमाऊंगा, इतना खर्च करूंगा और इतना बचाऊंगा और इतना उसमें लगाऊंगा, इतना घर लेके जाऊंगा, ठीक है जी। अगर आपका बिज़नेस है कि जी आप चला रहे हैं एक लाइफस्टाइल कंपनी जिसमें आपके पास 50 या 100 लोग हैं, आप कहते हैं यार यही है बस, ठीक है इन्हीं को रखना है मैंने, ना मैंने आगे बढ़ाना है ना कुछ करना है, ये चला जाएगा कुछ तो रिप्लेस कर लेंगे कुछ कर लेंगे, 4-5 कस्टमर हैं बस चल रहा है, ठीक है, तो फिर यू कैन अफोर्ड टू डू दैट, ठीक है। या फिर आप छोटी कंपनी हैं, आप कहते हैं यार मुझे जो है ना वो HR का झंझट नहीं पालना, मैंने नहीं करना कि यार ये वहाँ का बेनिफिट, ये इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस, आप कहते हैं यार मैं तुम्हें
फ्लैट आउट कैश इन हैंड दूंगा, अपना सर का दर्द फिगर आउट करना।
एग्जैक्टली तो ये अच्छे अच्छे बिजनेस मॉडल हैं, बट दिस इज नॉट अ मॉडल। हमारा मॉडल हमेशा से ये रहा है कि यार वी बिल्ड अ कम्युनिटी अराउंड पीपल। आई गिव एन एग्जाम्पल, अभी कोविड के बाद जब हमने कराची से लाहौर इस्लामाबाद के अंदर ऑफिस खोले तो काफ़ी लोगों ने मुझसे ये कहा कि यार अब लाहौर के प्रोजेक्ट्स अलग होंगे और कराची के प्रोजेक्ट्स अलग होंगे और इस्लामाबाद के अलग होंगे, तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। एंड यू कैन चेक कि अभी जितनी कंपनीज हैं पाकिस्तान में जो काम कर रही हैं उन सब का यही मॉडल है कि जी लाहौर के प्रोजेक्ट्स अलग होते हैं, इस्लामाबाद के अलग होते हैं, कराची के अलग होते हैं, हमने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया कि जी हम सबको जो है वो एक ही प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो हमारे प्रोजेक्ट पे कुछ लोग इस्लामाबाद के होते हैं, कुछ लाहौर के होते हैं, कुछ डिपेंड करते हैं कौन कहाँ अवेलेबल है। इससे इंटरेक्शन बढ़ रहा है, एक कम्युनिटी बन रही है। अब लोग, बहुत सारे लोग यहाँ से मूव करके लाहौर चले गए, इस्लामाबाद चले गए, कराची से, फ्रेंडशिप्स बनी, सब कुछ हुआ, लोगों ने सीखा। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको, हमने क्या कहें, हमने वोकेशन एक स्टार्ट किया। वोकेशन जनाब, वो 8-12 लोग जो है हमने ट्रेन में भेजे पहले लाहौर, उनको ठहराया वहाँ पे हमने, वो जी उस ऑफिस से काम कर रहे हैं वहाँ पे, उन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, फिर वो इस्लामाबाद जा रहे हैं, इस्लामाबाद से वहाँ काम कर रहे हैं, फिर वहाँ से वो वापस आ रहे हैं। एक एक्सपीरियंस क्रिएट किया। देयर इज़ अ कॉस्ट इन्वॉल्व विद दैट, एंड यू कैन नॉट रन अ मॉडल विद लाइक दैट इफ़ यू आर गिविंग सैलरीज इन यूएस डॉलर, या पैक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। दूसरा, लास्ट जब आप बात कर रहे हैं सैलरीज बढ़ती हैं, तो वी टू कॉम्बैट दैट हमने बाय एनुअल इंक्रीमेंट्स किए हैं। तो हर 6 महीने बाद इंक्रीमेंट होता है लोगों का। अगर जो है लोगों का जो है सैलरी उस डॉलर की वजह से कम हो रही है, तो हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड देयर बीन केसेस कि जो है ना, साल में जो है वो 1.5-2 लाख तनख्वाह भी बढ़ी है एक बंदे की, राइट। तीसरी चीज़ ये है कि जी पिछले 1.5 साल से तो जो है ना वो डॉलर नीचे गया है। तो अगर सोचें, अगर हमने पैक किया होता तो फिर लोगों का क्या हाल होता। एक और चीज़ है, जब रिसेशन पिछले 1.5 साल में गुजरा है, तो काफ़ी कस्टमर्स ने आगे हमसे रेट्स निगोशिएट किए हैं कि यार अब आप जो है ना वो ठीक है था, अब या तो आप बंद कर दें या फिर आप निगोशिएट करें। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं फिर उनके साथ, तो फिर हमसे भी निगोशिएट कर रहे होते। तो आई थिंक एक इन प्रिंसिपल मेरा ये है कि जी मेरा मॉडल नहीं है ये, मेरा मॉडल ये है कि जी मैं एक होलिस्टिक कंपनी चलाऊँ जिसमें टेंपल यूनिवर्सिटी भी चल रही है, एम्पावर फाउंडेशन भी चल रही है।
बेसिकली आपकी व्हेन यू आर बिग इनफ, इट्स डिफिकल्ट टू, वो छोटी कंपनीज के लिए है कि आपने उठाया और उठा के बस कनेक्ट कर दिया, और आप दरमियान में जो है ना आप फाइवर बन गए बेसिकली कि यार मुझे एक परसेंटेज मिल रही है और मैं तुम्हें कनेक्ट कर रहा हूँ उसके पैसे ले।
एग्जैक्टली।
अगर मैं इसी को एक स्टेप आगे लेकर जाऊँ, देखें जो चर्न का बड़ा मसला है ना पाकिस्तान में, आई फील लाइक दैट समथिंग दैट एवरी टैक्सी सीईओ आई हैव स्पोकन टू हैज़ मेंशनड, उसमें जो मुझे एक चीज़ नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि देर इज़ नो इंसेंटिव स्ट्रक्चर फॉर पीपल टू स्टे इन द लॉन्ग टर्म, राइट। सो आप एक आ रहे हैं, वो या तो प्रेडेटरी किस्म के मॉडल्स हैं जो आके कहते हैं कि जी 2 साल तुम हमारे साथ रहोगे, अगर नहीं रहोगे तो हम तुम्हारे ऊपर केसेस डाल देंगे, मतलब हार्ड पावर यूज़ करके। मॉडर्न डे के अंदर हार्ड पावर नहीं चलती, आप पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर आप कौन से केसेस की बात कर रहे हैं, बट वो बच्चे को आपको डराने धमकाने के लिए ठीक है, अच्छा है। दूसरा तरीका ये है कि आप इंसेंटिव लेकर आएँ, आप उसको बताएं कि यार फॉर एग्जांपल कोई बंदा अगर पाकिस्तान से माइक्रोसॉफ्ट जाता था, तो वो जाता था स्टार्ट में उसको एक एक्स अमाउंट ऑफ स्टॉक ऑप्शंस मिलती थी जिसका वेस्ट पीरियड होता था कि यार तुम 4 साल बाद छोड़ के जाओगे तो इतना मिलेगा, 7 साल बाद छोड़ के जाओगे तो इतना मिलेगा। तो पहला तो मेरा क्वेश्चन उसमें आता है कि पाकिस्तान में वाई इज़ इट दैट वी ऑल होल्ड आवर, ऐसे मज़ेदार बात यह कि IPO भी कोई नहीं करता, सो वो जो स्टॉक्स हैं उसकी 1.5 रुपये की वैल्यू भी कोई नहीं ना, मतलब वो अपनी उसके लिए यह है कि यार भाई आई एम अ परफेक्ट ओनर ऑफ माई परफेक्ट कंपनी। बट एक तो वी हेट शेयरिंग एक्विटी विद पीपल, एंड आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट बी क्रेजी विद दैट इक्विटी, दुनिया में मॉडल्स हैं और वो भी मार खा के ही बने हैं वो मॉडल्स, बट देर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ एन इंसेंटिव टू बी लॉयल। लॉयल्टी लोग आके बड़ा एक मॉरल स्टैंड पॉइंट पर आते हैं और कहते हैं कि यू नो मॉरल लॉयल्टी डिमांड करते हैं। मेरे हिसाब से लॉयल्टी इज़ गुड बट इट हैज़ टू बी कॉम्पनसेटेड, एंड वो फिर तभी होती है जब आप जाते हो जाके कहते हैं कि यार तुम इतने अरसे रुकोगे तो हम तुम्हें कोई वेस्ट पीरियड के बाद कुछ देंगे। अच्छा, उसमें कुछ लोग कहते हैं इक्विटी स्टॉक्स, पाकिस्तान में नए मॉडल्स भी आए हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि यार 7 साल रुको तो हम तुम्हें एक अपार्टमेंट तुम्हें बना के दे देंगे, राइट। सो हर चीज़ के अराउंड एक रियल इस्टेट का मॉडल जो है वो दरमियान में डाल देते हैं वन वे और दी अदर। आई थिंक इट्स फेयरली इमेजिनेटिव, बट इररिस्पेक्टिव कुछ ना कुछ तो है, कहीं ना कहीं आपको वो इंसेंटिव स्ट्रक्चर बिल्ड इन करना पड़ेगा। और इसी के साथ फिर मेरा दूसरा सवाल आता है कि डू यू थिंक एट सम पॉइंट वुड यू गो टूवर्ड्स IPO एंड वाई डिड यू नॉट गो टूवर्ड्स IPO टुडे, जिसमें जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि जी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हम क्यों जाएं IPO के ऊपर, हमें तो पैसे नहीं रेज़ करने, मतलब हमें पैसे रेज़ करने तो पैसे ही रेज़ करने की कोई वजह होनी चाहिए। तो जिसमें मैं, मेरा हमेशा उसका फॉलोअप ये होता है कि IPO श्योर इट्स रेजिंग मनी फॉर XYZ व्हाटएवर रीजंस, बट मोर देन द रेजिंग मनी इट्स एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ सेकेंडरी मार्केट वेर यू कैन टेक एग्जिट्स, राइट। सो आप कहते हैं कि यार अगर आज मैं अपने एम्प्लॉई को जाके मैं कंपनी के विद इन माई ओन बुक्स में कहता हूँ कि यार मेरे 100 मिलियन शेयर्स हैं और तुम मेरे साथ 5 साल रुको, मैं तुम्हें 50,000 शेयर्स दे दूंगा, उसको तो शेयर का कोई फायदा नहीं है जब तक कि IPO नहीं होगा और वो जाके ओपन मार्केट में उस 50,000 शेयर को किसी को बेच सकता है और उससे एग्जिट ले सकता है. तो वॉट आर योर थाट्स ऑन गोइंग आई पी ओ फॉर टेन पर्ल्स? डू यू थिंक यू विल गो एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर? इफ नॉट वाई नॉट? एंड देन कनेक्ट दैट विद द इंसेंटिव स्ट्रक्चर फॉर स्टेइंग.
श्योर. सो एक्चुअली आई हैव रिटन अ फ्यू पॉइंट्स जो आपने बात की, तो मैं आई स्टार्ट विद दैट. टेन्योर बेस एम्प्लॉइज, जो लोगों का टेन्योर था वो कम होता जा रहा है, दो रीजन्स हैं. एक तो ये कि मैंने आपसे कहा ना, प्री कोविड वी यूज़ टू हैव पीपल जो कि हमारे पास 10 सालों से काम कर रहे थे, अभी भी हैं हमारे पास, बट परसेंटेज थोड़ी कम हो गई है. बिकॉज कोविड ने बहुत सारे लोग जो हमारे जा रहे होते हैं 5 साल काम करके, उनको हम पूछते हैं क्यों जा रहे हो, तो पूछते हैं यार वी जस्ट वांट टू एक्सप्लोर, वी डोंट सी कि है क्या बाहर, है क्या. और फिर होता है कि बाहर जाके फिर वो 6 महीने वापस भी आ जाते हैं कि यार
बस देख लिया, अच्छा है जंगल बहुत अच्छा है अब.
एग्जैक्टली, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड.
राइट
राइट. तो वो वाली कहानी. लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बाहर जा रहे होते हैं, ठीक है, कुछ लोग. और आजकल जो नया जो वो है ना, मिलेनियल्स सब कह रहे हैं, और जो नए आजकल जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनका तो अटेंशन स्पैन जो है वो इतना कम है कि वो अपने फ़ोन के ऊपर या टेलीविजन के ऊपर एक प्रोग्राम नहीं देख सकते एक घंटा दो घंटा. तो हाउ डू एक्सपेक्ट देम टू वर्क फॉर यू नो अ कंपनी फॉर 3 years और 4 years और 5 years?
राइट.
तो वो तो ये माइंडसेट है. अब तो लुकिंग एट दैट, हम अपने हमारे जितने भी इंसेंटिव्स थे वो सारे टेन्योर बेस्ड बेनिफिट्स थे कि जी अगर आप इतने साल रहेंगे तो आपको ये मिलेगा, इतने साल मिलेंगे तो ये मिलेगा, हमारा सब कुछ था वो. इनफैक्ट हमने इक्विटी भी दी हुई है लोगों को, एल्टी लॉन्ग टर्म इंसेंटिव प्लान, और इसी महीने वो मैच्योर भी हो रही है, जो कि 3 साल से लोग हमारे पास थे उनको वील यू नो ऑफ वी उनका कैश वो है कि जी कितना कैश आपको मिलेगा सबको, इस करोड़ जो कि जा रहा है नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह, तो वो भी जा रहा है. बट अब हम जो नए इंसेंटिव बिल्ड कर रहे हैं एचआर के साथ मिलकर, वो ये कर रहे हैं कि जी हाउ डू इंसेंटिवाइज पीपल जो कि इनका अटेंशन स्पैन और लाइफ जो है ना वो एक इनका है ही नहीं कि जी. कुछ बच्चों का तो ये है ना कि जी 1 साल काम करना है बस. प्रीवियसली अगर आप एक रिज्यूमे देखते थे आपको नज़र आता था कि यार ये बंदा 5 साल काम किया है, 3 साल, 1 साल वाले को आप देखते बुलाते भी नहीं थे. अब तो कोई रिज्यूमे ऐसे नहीं है जो 1 साल से कहीं काम किया हो, कोई रिज्यूमे नहीं है इस तरह का, बहुत कम रिज्यूमे हो गए.
राइट.
अगर स्पेशली अगर उसने 5 साल पहले स्टार्ट किया तो, हाँ बहुत पहले स्टार्ट किया तो होगा. तो इसकी वजह से जो है वो रिटेंशन जो है वो ये है प्रॉब्लम है कि अब एक वो चल गई है ना कि जी हवा चल गई है, वो हर बंदा जो है वो 1 साल के बाद स्विच कर रहा है, ठीक है, विच इज़ अ गुड थिंग. ठीक है, अगर आपने एक्सपोजर करना है तो करो, अच्छी बात है, अपने नोटिसेस पूरे करो, चीज़ें करो, चले जाओ. अगर नहीं करोगे तो फिर जो है ना वो पेनल्टीज होती हैं कंपनीज के पास, कई बार ये हो गया वो हो गया, एग्जिट भी होता है, ऐसा नहीं कि आपने बुला के रख लिया और FIA को बोल दिया, ऐसा नहीं है. तो आई थिंक जो एक हमने वो भी शुरू स्टार्ट की हुई कि अगर आपने गाड़ी ख़रीदनी है तो कंपनी आपको स्पॉन्सर कर देगी, आप जो ना आधे पैसे आप दें, आधी कंपनी दें, आपको जो है ना वो गाड़ी मिल जाएगी 3 साल के बाद, वो भी किया हुआ है. IPO, आई थिंक देर हैज़ टू बी अ रीज़न फॉर IPO. देखिए IPO फॉर सेक ऑफ IPO नहीं करना, वो अगेन प्रोडक्ट बनानी है या बिजनेस करना है, क्यों करना है, बस पैसे कमाना है, ऐसा नहीं. तो बहुत सारे IPOs जो हैं वो पैसे कमाने के लिए हो रहे हैं. देखिए यार बहुत थक गए, अब पैसे कमा के ना एग्जिट करते हैं. हमने जो है वी बीन अप्रोच बाई मैनी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स सो फार कि यार IPO क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते. देखें हर चीज़ का एक टाइम होता है. हमने जो है ना वी इन्वेस्टेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन द बिजनेस ऑलरेडी विदाउट IPO एंड हैव एक्वायर्ड 13+ कंपनीज, ठीक है. ये अगर हम नहीं कर रहे होते तो फिर हम ऑलरेडी जो है वो पैसे कमा रहे होते, घर ले आ चुके होते, प्लाजे बना चुके होते हम. हमारा कोई वी स्टिल हमारे सारे ऑफिस जो है रेंटेड है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोई हमारा प्लाजा नहीं है, कुछ नहीं है, बिकॉज वॉट वी डन वी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. हाँ अगर हमें नजर ज़रूरत पड़ेगी कि यार हमें और मजीद ग्रो करने के लिए, एक्विजिशन के लिए, फिर और कोई बिजनेस एक्वायर करने के लिए हमें जो है वो कैपिटल की ज़रूरत है, तो हम ज़रूर उस तरफ जाएंगे. एक जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान में IPO का वो ये भी है कि जी फंड्स जो हैं वो बाहर नहीं आ सकते यहाँ से. जिन्होंने जो जिन IT कंपनीज ने IPO किया है उनको ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है कि जी दे वॉन्ट टू एक्सपेंड द बिज़नेस आउटसाइड पाकिस्तान, लेकिन दे आर नॉट एबल डू दैट बिकॉज फंड्स बाहर नहीं जा सकते. तो इसलिए भी जो है वो IPO करने का फ़ायदा नहीं. इससे बेहतर ये है कि अगर आप
so policy regime is also not very favorable for IPO.
I mean, you can say that unless you want to, you know, exit for the sake of exit and make money.
Right. Makes sense. You're an IT services business, quote unquote. लॉट ऑफ पीपल आर नाउ बिगिनिंग टू से कि यार आईटी सर्विसेज जो है वो तो एक डाइंग इंडस्ट्री है, फ्यूचर इज़ प्रोडक्ट, फ्यूचर इज़ ऑल अबाउट के यार या तो आप डायरेक्टली शिप टू कस्टमर प्रोडक्ट बनाएं, और चूंकि वो एक हवा चली ऊबर शूबर टाइप्स, तो वो भी एकदम से सबने कहा कि यार नहीं नहीं तो सब लो वैल्यू पाकिस्तान में, तो बस ये इनोवेशन नहीं हो रही क्योंकि प्रोडक्ट नहीं बनाई जाती। जैसे मेरा अगेन क्रिटिक उसमें ये होती है कि टेक्निकली पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स बन रही हैं, टेक्निकली क्रीम की डेवलपमेंट सारी पाकिस्तान में हो रही है, टेक्निकली मोटिव की या की ट्रकिंग की पूरी डेवलपमेंट पाकिस्तान में हो रही है, बहुत सारी और ऐसी कंपनीज हैं। आप अगर आज पाकिस्तान में रियलिस्टिकली कोई प्रोडक्ट बनाएंगे भी, तो वो प्रोडक्ट अगर आपने ग्लोबल फेसिंग बनानी है तो वो मोस्ट लाइकली आप उसको सिलिकॉन वैली में ही रजिस्टर करेंगे, बिकॉज फंडिंग भी वहीं पर होगी, सारा कुछ वहीं पर होगा, आखिर में पाकिस्तान में बैक ऑफिस ही हो रहा होगा, राइट? सो द आइडिया दैट यू नो वी कैन क्रिएट अमेजिंग बिलियन डॉलर प्रोडक्ट बिजनेसेस, उसमें पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर पाकिस्तान सर्विसेज मार्केट ही होगी कि वो एक्चुअल कंपनी जो कि इनोवेट कर रही है सिलिकॉन वैली के अंदर, चाहे वो पाकिस्तानी कर रहे हो, उसकी सर्विसेज पाकिस्तान में हो रही है। अभी भी यही होता है कि आपका थर्ड पार्टी होता है, वो बैठ कर इनोवेट करके आपको सर्विसेज ला देती है। बट बियॉन्ड दैट, अगर मैं उसको कंज्यूमर फेसिंग ना बात करूँ, अगर मैं इवन बात करूँ कि यार बी टू बी जो जनरली आपका काम है, उसमें वी आर नाउ गोइंग टूवर्ड्स अ वर्ल्ड वेयर बास्केट ऑफ सर्विसेज को आप इकट्ठा करते हो और आप एक नई प्रोडक्ट बना लेते हो, राइट? सो आप कहते हो क्या, और इन द एज ऑफ AI आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि यार मैंने मेरी एडिटिंग के लिए मैंने ये टूल लिया और उसके लिए मैंने ये टूल लिया। सो जहाँ पर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आज भी पॉडकास्ट एडिटर है, वहाँ पे दुनिया में किसी ने बैठ के एक टूल बना दिया ऑटो पॉड के नाम से, जिसमें अब वो $5 या $30 पर मंथ वो लेता है, और वो बैठ के जो है ना, जो हमें एक एवरेज एडिटर 6 से 8 घंटे में एडिट करता था, वो चीज़ 15 मिनट में एडिट हो जाती है। तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके मॉडल चेंज हो गए, वेयर रादर देन मोनेटाइजिंग ऑन यू नो अ हेड काउंट, people are beginning to monetize around the service that is required, because that service is now going to be required by a lot more people. So pehle sirf agar enterprise wo kar rahi thi, to AI ki madad se bajaye, ek to doomers hai na, wo keh rahe hain ki ab to sab tabah ho jayega, koi naukriyan nahi karega. Mera personal opinion fark hai, mujhe ye lagta hai ki we're now going towards, thodi geopolitics mein darmiyan mein add karunga, lekin we're now going towards a world where aging populations of America, Europe and Japan, is tarah ki jo countries hain, that's going to de-globalize the world, and we're going to see a lot of you know productions happening within the country. So jo Trump ki puri element hai, you know, bring back manufacturing in America, wo aapko nazar aata hai ki us vision ko aid kar raha hai Tesla with the robotic machineries and wo sara kuch, ki wahan pe wo keh rahe hain ki hamari cost of labor high hai, can we automate it enough to a point where the labor is out of the equation, and then can we say ki you know we don't need to be dependent on China. So जहाँ पर अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑन अ वेरी वेरी लार्ज स्केल अमेरिका में वापस जाती है, वहाँ पर आपको फैक्ट्री वर्कर नहीं चाहिए, वहाँ पर आपको एक प्रॉब्ली मैनेज सर्विसेज का बंदा चाहिए जो बैठा है और बैठ के पूरे दिन बैठ के देख रहा है कि यार मशीनें सारी सही हैं, बाकी AI बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। सो बट सडनली अ न्यू फॉर्म ऑफ डिजिटल सर्विसेज रिक्वायरमेंट्स पॉप अप, वे यू डोंट हैव टू ब्रिंग इमिग्रेंट्स टू यूरोप और इमिग्रेंट्स टू अमेरिका, यू कैन एक्चुअली डू द मैन्युफैक्चरिंग वाइल हैविंग पीपल इन इंडिया इन पाकिस्तान manage your manufacturing and so on and so forth, right? So opportunities jahan pe kam ho rahi hai wahan par opportunities rise bhi hongi as the new model of economic model pops up. In that context, do you think ke aapko lagta hai ke yaar future of the services industry, just purely services industry, is secure, and you wouldn't want to pivot into ke yaar acha hum let's say app development karte hain, to yaar ek team ko main lagaun aur usse kahun ke can you think of products जो के बी टू बी ही हों, वही जो हम करते हैं वो एक डिफरेंट मॉडल के थ्रू हम जाके लोगों को बेचना शुरू करें, $500 की सब्सक्रिप्शन दी और उसमें बैठ के बनाना शुरू किया रादर देन यू नो के हेड काउंट पे बेचा?
अगेन लोडेड क्वेश्चन। आई थिंक इनोवेशन से स्टार्ट करते हैं। इनोवेशन जो है वो इस वक्त जो है वो AI के अंदर ही हो रही है, ठीक है? पूरी दुनिया जो है रोबोटिक्स, AI, ब्लॉकचेन, IoT ज़्यादा हो रही है, उस पर इनोवेशन हो रही है। तो अगर वी आर अ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस कंपनी, ठीक है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज कह लें आप, तो फिर सॉफ्टवेयर सर्विसेज में अगर आपका प्रोडक्ट का बैकग्राउंड, अगर आपको प्रोडक्ट के लिए क्या चाहिए, आपको प्रोडक्ट के लिए आपको चाहिए एक एक्सपीरियंस ऑफ ए सर्टेन इंडस्ट्री,
डोमेन नॉलेज
एग्जैक्टली, ठीक है? तो अगर आपके पास, अगर आपने पूरी ज़िंदगी सॉफ्टवेयर सर्विसेज की हैं और आप आज कहते हैं कि जी मैंने एक वो करनी है, प्रोडक्ट करनी है, तो फिर कैसे पॉसिबल होगा वो?
राइट,
आपके पास डोमेन नॉलेज नहीं है, आप बना तो लेंगे।
बट अगेन देखें, दो फर्क है ना, मैं आपको ऊबर नहीं बनाने को कह रहा, मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ है जो कि सॉफ्टवेयर है। सो आप फॉर एग्जांपल अगर ऐप्स बना रहे हैं, सुबह शाम बना रहे हैं, आप वेट करते हैं कि यार बेसिकली आप अपने ही सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज़ करना शुरू कर देते हैं. काफ़ी दफ़ा लोग जो हैं वो ये इस डर में कह रहे हैं यार मैं प्रीमियम कमा रहा हूँ, वाई वुड आई वांट टू डिस्टर्ब माई सेल्फ. बट देन देर आर लॉट ऑफ पीपल वो आर सेइंग कि लिसन मे बी यू डू नीड टू डिस्टर्ब योर सेल्फ. अगर तुम्हारे पास 500 बंदे की, मैं अपनी इंडस्ट्री से बात करूँ ना, 500 बंदे की तुम्हारे पास वीडियो एडिटर की टीम बैठी हुई है जो लोगों के लिए वीडियोज एडिट करती है, तो मे बी यू शुड ऑल्सो स्टार्ट बिल्डिंग अ टूल दैट कैन लोअर द 500 हेड काउंट टू 50 फॉर द सेम अमाउंट ऑफ पीपल और इंक्रीज द कस्टमर बेस with the, you know, you get it, right? Productivity
yeah, yeah, increase. Yeah,
exactly. So, मैं purely आपकी industry में ही कह रहा हूँ कि within the services that you provide, rather than becoming a software solution, you become a product. कि यार मेरी, come and, you know, use this product.
Right. Yeah, yeah. No, we've already done that. हमने एक testing automation की एक product बनाई है, self-healing automation system, जिसके अंदर आप जो है वो implement कर दें तो जो code में changes हो रही हैं, उसको खुद बखुद absorb करके, check करके, उसको change कर लेगी code को अपना. तो ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट आपने लिखी हैं वो आपको रीयूज हो जाएंगी विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन. तो इस तरह की हमने काम किए हैं.
Right.
काम वी क्रिएटेड अ फ्यू एआई फ्रेमवर्क, तकरीबन 8 के करीब हमने एआई फ्रेमवर्क्स बनाए जिसके अंदर आप यू नो एक अगर आपने फाइनेंशियल एप्लीकेशन पे कोई इंप्लीमेंट करना है, इसके रिस्क एनालिसिस करना है, वो पूरा करके दे देगा. तो इस तरह की चीज़ें हमने बनाई हैं जो कि हम कस्टमर को जब हम एआई को सेल कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि ये फ्रेमवर्क ऑलरेडी बना हुआ है, विल यू नो पुट योर रैपर अराउंड दिस and you know add your wish list, jo bhi aapne karna hai wo kar sakte hain aap. Yeah, we're doing that already but not on at a commercial level at the moment because okay. Again you need to have a free mind ke aap ye kaam fir us pe focus karna padta hai and hamara problem ye hai ki ji agar hum focus pe karenge to fir revenue kaun dekhega, fir services ka revenue bhi dena shuru ho gaya. To isliye jo hai wo you have to be very very focused on what you do and there are few people jo ke isna kar rahe hain. Again, you have to have a, you know, the right connection. Different business hai bilkul. Product ek bilkul different business hai. You have to know how to sell a product. You have to have, you know, how to raise money. Ye sara ek alag ball game hai versus services business. And we do product development for others. Hum usme, you know, we provide employment to more than 1,000 people. Wo hume uska ek wo hai ki ji hum ye karte hain. And yeah, I know ke AI अगर इस्तेमाल नहीं की तो वो मसला हो जाएगा उसका. वी आर ऑलरेडी यू नो इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम्स और हर वीक हमारी एक मीटिंग होती है कि हम उसमें कहाँ तक पहुँचे, हाउ मेनी पीपल आर यूजिंग AI, व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज आर वी गिविंग टू कस्टमर्स. ये हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं.
राइट.
तो या
यू आर द ऑफिशियली यू आर द CEO ऑफ द कंपनी.
आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर.
द मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर द पास्ट सिंस इट स्टार्टेड यू हैव बीन द सेम रोल. डू यू थिंक you will look at a transition at some time in the future where you'll maybe become, let's say, the chairman of the group and let a professional come in? I mean, not to say you're not the professional, but you know, you get what I'm saying, right? Okay. Your focus will be on a more holistic level and then...
Already, I think I'm working at a very holistic level. I mean, I'm looking at a very high level. I'm not into day-to-day. Day-to-day means that where business is going, I'm looking at it. ऑपरेशंस कहाँ जा रही है उसको नहीं देख रहा मैं.
ठीक है.
तो अब बिजनेस के लिए भी जो है या वी कैन ऐड मोर पीपल लेकिन यू नो यू हैव इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड द राइट पीपल. आई हैव ट्राइड इट अ कपल ऑफ टाइम्स बट वो कुडंट फाइंड द राइट पर्सन.
हैव यू ऑलवेज लुक्ड इन पाकिस्तान?
यस, ऑलवेज लुक्ड इन पाकिस्तान.
व्हाई डू यू थिंक पाकिस्तानी कंपनीज आर नेवर एबल टू, व्हाई डोंट वी एवर सी अ बॉब, आई डोंट नो, समथिंग leading a Pakistani company. Clearly, I mean, you're working out of the UK, right? You have offices all over the world. Technically, you can have a group CEO, and Bob doesn't have to be Gora, because then people say that you just Gora ko hi lekar aate hain. Could be a multinational, like a global player, jo ke phir wo breadth of global knowledge lekar aata hai, wo lekar aata hai, you know, how do you work in a...
Thoda sa jo hai na difficult lesson hota hai, if you are running a company for... सो मैनी ईयर्स, ठीक है, आपका एक स्टाइल होता है, एक कल्चर बनता है. जब बाहर से आप एक टॉप लेवल का बंदा लेके आते हैं तो वो ऑब्वियसली अपना एक स्टाइल कल्चर लेके आता है और फिर जो आपकी जो मैनेजमेंट टीम है, जो आपके पुराने लोग हैं, दे मे नॉट बी यू नो
ओके, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव ना हो जाए बेसिकली.
तो वो बड़ा देख के करना पड़ता है आपको. इट्स वेरी ईजी टू फाइंड अ पर्सन एंड ब्रिंग हिम इन एंड देन हू कह रहे हैं जो आप कर रहे हैं सब बेकार
है,
पुरानी चीज़ें हैं, या दुनिया में ऐसे होता है. बट वैन यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दैट, उसके जो है ना ड्रॉबैक ज़्यादा होते हैं कि लोग जो है ना वो छोड़ने छोड़ के जाना शुरू हो जाएंगे और फिर आपका जो है ना वो कल्चर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑन दैट.
राइट.
इसलिए जो है वो वी डूइंग आई मीन वी आर ब्रिंगिंग इन पीपल फ्रॉम आउटसाइड, ऐसा नहीं कि हम नहीं के आ रहे, लेकिन बड़ा स्लोली और केयरफुली करना पड़ता है,
सब कुछ तबाही ना हो जाता है एक्साइटमेंट में. व्हाई डिड यू गो टू लैटिन अमेरिका? दिस प्रॉब्ली गोना बी माय लास्ट क्वेश्चन, थोड़ी सी लंबी भी हो रही है, बट आई हैवंट हर्ड ऑफ अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी कंपनीज हु हैव लुक टुवर्ड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली इस क्वेश्चन को अगर दो स्टेप्स में वो करूँ, वो पाकिस्तानी सोच तो ये ना कि यार मेरे पास मुझे सस्ता तरीन बंदा चाहिए, उसको मैंने निचोड़ के मैक्सिमम डॉलर निकालना है. आपने 200 बंदा अमेरिका में भी रखा हुआ है, आपने 400 बंदा लैटिन अमेरिका में भी रखा हुआ है. हाउ डिड दैट हैपन एंड व्हाई लैटिन अमेरिका? लॉट ऑफ पीपल आर नॉट लुकिंग, व्हेन देर लुकिंग एट लेट्स से ऑफशोर मार्केट्स, देर लुकिंग एट मनीला और लेट्स से बेंगलोर और पाकिस्तान में जहाँ पे भी, लैटिन अमेरिका डज नॉट नेसेसरली मेक दैट कट इन देयर माइंड्स.
A very good question. So when we go to a customer, we don't tell him ki ji hum ek outsourcing company hai ya fir hum offshoring karenge kuch karenge. Hum kehenge, we tell them ki ji hum ek product development company, hum software development company hai, aap ke hum challenges solve kar sakte hain, aap bataye kya challenges hai. Jab wo hum challenges batate hain, hum unko option dete hain ki ji do you want us to solve it here, near shore or offshore. Aur ye customer ki apni marzi hoti hai ki wo kahan pe kaam karana chahe. Kuch customers hote hain, कुछ हमारे यूएस गवर्नमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं तो वो वहीं पे काम कराते हैं, तो वी हैव अ लार्ज टीम वर्किंग फॉर देम. अदर कस्टमर्स भी हैं जो कि वहाँ पे काम कराते हैं. कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें कुछ कॉस्ट सेव करनी है, बट वी कांट गो बियॉन्ड द सेम टाइम जोन. हमें जो है वो एजाइल डेवलपमेंट करनी है इन सेम टाइम जोन, तो हमें जो है वो आप टीम प्रोवाइड करें जो कि नियर शोर हो. नियर शोर के लिए लैटिन अमेरिका जो है वो बड़ी अच्छी मार्केट है, इंग्लिश स्पीकिंग लोग मिल जाते हैं आपको, टैलेंटेड लोग मिल जाते हैं, और वो भी पाकिस्तान की तरह का एक कल्चर है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा फ्लुएंसी नहीं है, और जो है ना लोग जो हैं वो.
व्हाट्स द कॉस्ट डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ लेट्स से अगर पाकिस्तान में एवरेज आउट ऑफशोर का बंदा जो है वो $36,000 का बिक रहा है, तो कोस्टारिका में कितने का बिक रहा होगा?
मेरा जो जनरल रूल ऑफ थम है वो ये है कि अगर US में कॉस्ट 3 है तो लैटिन अमेरिका में 2 है और पाकिस्तान में 1 है.
अच्छा, और वहाँ का टैलेंट जो है वो उसके भी वो इस तरह के मसले हैं कि यार अब वो जो है ना इमिग्रेशन आ गई उसकी अमेरिका की, वो अमेरिका निकल गया है तो लेफ्ट राइट, या वहाँ पे जनरली स्टेबल है टैलेंट?
नहीं, वहाँ पे स्टेबल है. वहाँ पे जो है पीपल, आई हैव नॉट सीन मच अट्रिशन, कोई ज़्यादा अट्रिशन नहीं है वहाँ पे. यू हैव टू पे देम वेल ऑब्वियसली रिटेन करने के लिए, और इनफैक्ट अच्छा जो है वो जो वहाँ का जो वर्कर है उसकी जो हैबिट्स हैं वो बड़ी अच्छी हैं कि काम के तौर पर अगर वो काम कर रहा है तो वो काम करता है. वी सीन कंप्लेंट्स कि भाई कुछ लोग हैं ऑफशोर में जो अवेलेबल नहीं होते, गायब हो जाते हैं, लेकिन
माउस मूवर लगा के मीट्स के ऊपर
लेकिन हमने कभी इस तरह की कोई कंप्लेंट नहीं सुनी किसी लैटिन अमेरिकन एम्प्लॉइज के बारे में.
मेक सेंस. ज़िशान भाई, आई एम गोना रैप दिस अप एट द 1 hour 40 minute मार्क. दो एक दफ़ा दरमियान में हमारा कैमरा भी बंद हो गया था ओवरहीट की वजह से, आई डू अपोलोजाइज फॉर दैट. ज़िशान भाई सोचते होंगे कितने अनप्रोफेशनल लोग हैं. ज़िशान भाई प्रॉमिस टू गॉड आपके अलावा कभी मसला नहीं करता. लास्ट टाइम बिजली चली गई थी, इस बार कैमरे का मसला आ रहा है. इट सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर दैट. मैं इसीलिए पब्लिकली बोल रहा हूँ, मैं किसी और पॉडकास्ट में पब्लिकली नहीं बोलता. बट थैंक यू सो मच, दिस वॉज सुप्रीमली इंसाइटफुल. आई सिंसियरली थैंक यू, आपने वक्त निकाला दूसरी दफ़ा फिर से निकाला, यू नो, फॉर शेयरिंग ऑल द इनसाइट. व्हाट यू बीन एबल टू क्रिएट इज अ फिनोमिनल इंस्टीट्यूशन. एवरी पर्सन दैट आई टॉक टू, पाकिस्तान में ना आई टी इंडस्ट्री के बारे में बड़े सारे ओपिनियंस होते हैं, बड़ा कॉम्पिटिशन भी होता है, तो पॉलिटिकल भी बहुत ज़्यादा है. 10 Pearls इज़ वन ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हमेशा अच्छी बातें सुनी है. सो यू नो आई कमेंड यू फॉर दैट, एंड आई होप कि इंशाल्लाह वी कैन सी अ 10,000 पीपल कंपनी कमिंग अंडर द बैनर ऑफ 10 Pearls. आई होप के यू नो वो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी मिले आपको और इस्तेदाद भी अल्लाह ताला दे आपको to you know go towards that. Thank you so much for coming in.
Thank you so much, aapne bulaya, and it was a pleasure. You know, I haven't been to any podcast.
This is the first one.
This is my first one.
Thank you for the honor.
And you know, main usually kaam focus karta hu kaam pe, aur you know how can I create value? But yeah, this was very good experience, and I wish you all the best. Or you know, aapka jo kaam hai wo kafi different hai, and I really like it. And I know you've got a lot of followers, and you know you are inspiring a lot of people, youngsters. Keep doing that, and I wish you all the best.
Thank you, sir. Thank you so much for coming in, and for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो तो दोस्तों यार के साथ जरूर शेयर करिएगा. मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताएं व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द आईटी इंडस्ट्री अबाउट द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जॉब्स एंड इकोनॉमिक्स, पर्टिकुलरली इन द डिजिटल सर्विसेज डोमेन. AI से आपको क्या लगता है, क्या चेंजेस आएंगे, क्या हम सब जॉबलेस हो जाएंगे या हम सब माला माल हो जाएंगे? What are your thoughts? I would love to hear them in the comment section below. But anyways, this was Sayed Muzammil Hasan Zaidi. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.